السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى انسان کی زندگی میں کتنی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آ جاتی. آپ نے ایک نئی دنیا میں ایک نئی چیز دریافت ہوئی ہے, ہمارے لیے تو نئی ہے, گورے کے لیے پرانی ہے, کیو آر کوڈ. جانتے کیا ہوتا ہے کیو آر کوڈ کہتے ہیں؟ ایک تعویذ ہے, چھوٹا سا تعویذ ہے. اس تعویذ کو یوں سکین کرتے ہیں, اس تعویذ کے اندر ایک کائنات اور دنیا کھل جاتے ہیں. کبھی اس تعویذ کو کسی نے چیلنج کیا, یہ کیا الٹی سیدھی لکیریں لگائی ہوئی ہیں؟ اس میں ساری الٹی سیدھی لکیریں ہیں, کیو آر کوڈ میں الٹی سیدھی لکیریں لگائی ہوئی ہیں, ہمیں بے وقوف بنایا ہوا ہے نا. اس نے کہا جی انگریز نے دے دیا ہے, اسی میں دنیا ہے. پر یوں کیو آر کوڈ یوں کھولتے ہی ایک دنیا کھلتی ہے, ایک نظام کھلتا ہے, ایک عالم کھلتا ہے. یہ نقش, یہ تعویذ, یہ حزب البحر, یہ فقیروں کے اسرار, راز اور رموز, یہ سارے کیو آر کوڈ ہیں, روحانی کیو آر کوڈ ہیں. ان کے اندر ایک دنیا ہے, ان کے اندر ایک کائنات ہے, ان کے اندر ایک نظام ہے, جو ضروری نہیں کہ ہماری عقل اور سمجھ میں آئے. دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے, یہ کیو آر کوڈ یہ ہماری سمجھ میں نہ آئے اور آئے ضروری نہیں. کائنات کے پرسرار راز, تہ در تہ راز ہماری عقل اور سمجھ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ہماری شعور اور احساس میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ایک پرانی کتابیں بیچنے والے نے اپنا واقعہ سنایا. پرانی کتابیں بیچتے ہیں, پرانی کتابیں بیچتے ہیں, اس نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے میں پرانی کتابوں میں جب فارغ بیٹھتا تھا اسے دیکھتا رہتا تھا, کیا ہے, جب کتابیں پڑھنے کا ذوق تھا. کہنے لگے دیکھتے دیکھتے مجھے کسی ایک کی ایسی کتاب ملی چھوٹی سی, چھوٹی سی کتاب ملی. پٹھان کی نسوار نہیں ہے, ستر شفایاں کہ یہ اوپر بیٹھا بندہ تھوڑا سا کوئی کام کرے تو بندہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتا ہے. ایک پٹھان کا نا خرگوش بھاگ گیا, اس نے کہا خانہ خرگوش بھاگ گیا. اس نے کہا نہیں جاتا, آئے گا کب, کرے اس کی نسوار ختم ہوگی خود آئے گا. ہم نے خرگوش کو نسوار لگایا, اس کی نسوار ختم ہوگی خود آئے گا. ایک پٹھان نے ایک بندے کو کہا اب دیکھو اب میرا موضوع کہاں بدل گیا. ایک خادم کو کہا دیکھو غلطی نہ کرنا, مطلب میں تجھے ماروں گا, اور خاص طور پہ یہ غلطیاں نہیں کر. اس نے کہا میں نہیں کروں گا. اس نے وہ غلطی نہیں کی, کچھ دنوں کے بعد اسے بہت مارا. اس نے کہا خان صاحب میں نے وہ غلطی تو نہیں کی, آپ نے کیوں مارا ہے؟ کہہ رہے کب تک تیری میں غلطی کا انتظار کروں, کب تک तेरी गलती का इंतजार कर, तू गलती करे मैं तुझे मारूं, कब तक है? कहते मैं कबाड़िया था, पुरानी किताबें बेचने वाला। तो मैंने एक किताब देखी, उसमें बड़े दिलचस्प वाकयात थे। मैंने पढ़ने शुरू कर दी, आगे पीछे से कुछ सफ़े फटे हुए थे, दुआ मौजूद थी। तो क्या मुझे जिंदगी में पहली दफा पता चला कि उस दुआ का नाम दुआए हिजबुल बहार है। पहली दफा पता चला। तो मैंने वो वाकयात पढ़ने शुरू कर दिए कि उसमें एक पहले उसमें जो एक दो वाक्य हैं वो सुना दूं, फिर इसका अपना फायदा क्या हुआ वो सुना दूं। उसने कहा कि मैंने पढ़ा कि बसरा में एक साहब थे, जो बसरा बहुत बड़ी बंदरगाह है, बहुत बड़ी मंडी है, आलमी तिजारत की। मैं बसरा गया हूं, तो बसरा में एक ताजिर था जिसका माल जहाजों में आता था और जहाजों में जाता था। वो बसरा के बड़े ताजरों में उसका शुमार होता था। और अजब बात यह है कि आज तक उसके माल में उसको कभी घाटा नहीं हुआ था। नफा नुकसान तो कारोबार का हिस्सा है, वो कभी नुकसान नहीं हुआ था। उसका जहाज कभी लूटा नहीं गया था। कजाक लूट लेते हैं, बहरी कजाक होते हैं चोर डाकू, जहाज लूट लेते हैं। का कई दफा कजाकों ने उसके करीब आए जहाज के, लेकिन कोई ऐसी ताकतें थीं कि वो अपना मुंह छुपाते थे, मुंह के आगे हाथ देते थे जैसे कोई चीज उनके मुंह पे लगती और चीखते थे, और वापस वो फिर अपनी कश्तियां लेके चले जाते थे। कहा लोगों ने ये बात सुनी हुई थी, एक तो इसके जहाज कभी नहीं लूटा, दूसरा इसको नुकसान कभी नहीं हुआ, और तीसरा इसका आज तक कोई जहाज डूबा ही नहीं। कहा 80-85 साल की उम्र का वो ताजिर था, और 50 साल से ज्यादा उसको जहाजों की तिजारत में और बड़ी तिजारत में हो गया था। उसके साथ के कई आए, कई जवाल में चले गए, कई घाटों में चले गए, कोई मर गए, कोई काम छोड़ गए, लेकिन इसको ना जवाल आया ना घाटा आया, कुछ भी ना। और लोग हैरान थे कि इसके पास ऐसी कौन सी चीज। और कहा कई दफा उसके जहाज को डुबोने के लिए तदबीरें की गईं, उसके जहाज के लूटने की हासदों ने तदबीरें की, किसी तरह उसका कारोबार नुकसान में आ जाए, वही चीज जो वो 5 दिरहम में बेचता था, वही चीज इन्होंने मार्केट में 3 दिरहम में बेची, ये भी 3 दिरहम में बेचने पे मजबूर हो जाएगा, और इसका माल बहुत ज्यादा है, जितना माल है उतना लाखों करोड़ों अरबों दिरहम का इसको नुकसान होगा। सारी तदबीरें करके देख ली, इसको नुकसान ना हुआ। इसकी 5 दिरहम की अगर बिकनी थी तो 5 ही में बिकी, उनकी 3 में बिक गई, वो नुकसान से और नुकसान में चले गए। उन्होंने सारी तदबीरें करके देख ली। अब उन्होंने क्या किया, अपने जासूस, अपने बंदे इसके कारिंदों मुलाजमों में भर्ती किए कि राज का पता करें कि अंदर राज क्या है, क्या पता करें राज क्या है। तो कहने लगे कि कुछ ही अरसे के बाद वो जो बंदे थे जो इन्होंने भेजे थे अंदर के राज लेने के लिए, वो वापस आए। तो उन्होंने कहा कि वो सारा दिन कुछ पढ़ता है, किसी को बताता नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसका एक जाती खादिम था उसको खिलाया पिलाया, उससे दोस्ती की, उससे ताल्लुक बनाया। जो जवानी से बुढ़ापे तक उसका जाती खादिम था, वो खादिम भी खुद बूढ़ा हो गया। उससे अहवाल पूछा तो उस जाती खादिम ने बताया कि इसको कहीं से एक विर्द मिला हुआ है, ये सारा दिन वही पढ़ता है। जब इसका खतरा बढ़ जाता है, कोई खदशा बढ़ जाता है, कोई नुकसान का खतरा होता है, या किसी की कोई परेशानी इसको आती है कहीं से, तो ये पढ़ना ज्यादा कर देते हैं। दूसरा, इसने एक टीम बिठाई हुई है, जमात बिठाई हुई है जहाज में, हर जहाज में उनको पूरी तनख्वाहें देता है, मरात, खाने, कपड़े, लिबास, उनके घर वालों के लिए ख्याल, घर वालों का खर्चा करता है। वो दुआ वो भी वही पढ़ते हैं। फिर इसका जो दफ्तर है जहां से सारा कारोबार बसरा में चलता है, अंदर बसरा के पुराने शहर में, तो उसको उसमें भी वो एक पूरी टीम बिठाई हुई है, वो एक पूरी जमात बिठाई हुई है, वो भी वही दुआ पढ़ती है। कहने लगा, 50 साल से तो मैं देख रहा हूं, छोटा सा था मैं इनके वालिद के पास आया था मुलाजमत करते, मेरी जिंदगी गुजर गई। कहने लगे कि मैं अब इस खोज में था, इस तलाश में था कि मुझे उस दुआ का पता चल जाए कि वो दुआ आखिर है क्या, और उस दुआ के अंदर इतनी तासीर, इतनी ताकत, इतना कमाल क्या है। ना इसके हाथ से होते हैं, ना ये नुकसान में आता है, ना इसको कोई लूटता है, और अगर लूटने वाले आते हैं तो वो अंधे भी होते हैं, चीखते भी हैं, मुंह पे आ गए, आंखों के आ गए, हाथ देते हैं वो भी नहीं कर सकते, नुकसान भी नहीं होता, हादसा भी नहीं होता, नफे पे नफा हो रहा। तो अब पता चला कि इसके पीछे वो दुआ है। अब है क्या दुआ, किसी को इल्म नहीं। ये इतला मिली, इन हासिदीन ने, ताजरों ने कहा कि तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे, तू उस दुआ का पता कर, हर जहाज इतने जितने भी इसके जहाज हैं बड़े बड़े, हर जहाज में एक टीम बैठी है, एक जमात बैठी है जो वो दुआ पढ़ रही है, उसका पता कर। ये लोग फिर गए मुलाजमत के, नौकरी के बहाने, इन्होंने जाके फिर तहकीक करनी शुरू की। करते कराते ये जहाज में सवार हो गए और जहाज की उस टीम के साथ राहो रस्म बढ़ाया, उस टीम के साथ राहो रस्म बढ़ाया। राहो रस्म बढ़ाने के बाद कहने लगे कि वो 3 महीने का सफर था, जहाज ने जाना था, वहां माल बेचना था, 40 दिन वहां खड़ा होना था, फिर अगला माल जो बसरा में बिकना था वो अगला माल जो है वो लेके आना था। ये 3 महीने का सफर था। कहा मुझे 3 महीने गुजर गए, वो दरवेश आंखें बंद करके सारा दिन पढ़ते थे, थक जाते थे, सो जाते थे, नमाज का वक्त होता था नमाज पढ़ते थे, बाकी औकात में वो सारा दिन वही विर्द रखते थे, अच्छा खाना, अच्छा बिछौना, खुदाम, गुलाम, उनके कपड़े, उनकी जूती, उनके खाने, उनका इंतजाम सारा करते थे, सारा करते थे, और ये सारा निजाम बनाते थे। कहा 3 महीने के बाद वो मायूस लौटा। ये नहीं है कि उन्होंने नहीं बताया, इसको जरूरत ही नहीं हुई, उनके अंदर हैबत, जलाल, अजमत इतनी थी तो जरूरत ही नहीं हुई कि उनसे पूछे। जुर्रत ही नहीं हुई कि उनसे पूछ। हैरान हुए, कहा कि ये जो ताजर थे ये उससे नाराज हुए और कहने लगे कि हमें हर हाल में वो रास चाहिए। कहा कि इनमें एक बंदा ऐसा था जिसने कहा कि मैं आपको दिनों में रास दूंगा। उसने कहा तू कैसे देगा? कहा ये मेरी अपनी तदबीर है। ये गया और दिनों के बाद राज ले आया। उसने कहा वो हिजबुल बहर पढ़ते हैं, तूने कैसे राज लिया? कहा कि वो जो बाबे बैठे थे इसके दफ्तर में पढ़ रहे थे, मैं वहां जाके गया और मैंने बीमारों की हालत बनाई। मैं वहां जाके गिर के तड़पने लगा, तड़पते तड़पते मैंने अपने कानों को चौकन्ना रखा कि इनके मुंह से क्या निकलता है। कहा थोड़ी देर के बाद दूर से आवाज आई, आप हजरात बैठे हैं हिजबुल बहर खुद पढ़ रहे हैं, इस पे पढ़ के फूंक दें ये भी ठीक हो जाएगा। तो दूसरे ने कहा हाँ हाँ हमें हिजबुल बहर पढ़ के इस पे भी फूंकनी चाहिए। तीसरे ने भी, दो तीन के मुंह से लफ्ज हिजबुल बहर इसके लिए अनजान लफ्ज था लेकिन इसने लफ्ज याद रख लिया। उनसे पढ़ के उनके मुंह से सुना और सुन के आया और आके उनसे कहने लगा कि वो जो दुआ है उसका नाम हिजबुल बहर है। अब वाकिफ ये भी नहीं थे, इन्होंने वक्त के सुलहा बुजुर्गों से के सामने बात कही तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है, हिजबुल बहर दुआ है और वो हिफाजत की दुआ है, उसमें बड़ी ताकत है, उसमें बहुत ज्यादा तासीर है, उसमें रिस्क दौलत है, उसमें मसाइल मुश्किलात का हल है, उसमें नाकामी और कर्जों का हल है, उन्होंने इसके बहुत फायदे बताए। अब क्या किया कि इन जो हासिदीन ताजर थे इन्होंने भी कुछ बंदे बिठाए और उनको कहा कि हिजबुल बहर पढ़ना शुरू कर दें हमारी हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के। इन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दी लेकिन इनकी हिफाजत ना हुई और उसकी हिफाजत होती रही। अब इन्होंने तहकीक की, बहुत ज्यादा तहकीक करने के बाद जिस नतीजे पे पहुंचे कि बसरा के जो ताजर थे उस ताजर की जो जमात थी टीम थी वो हिजबुल बहर पढ़ रही थी, हिजबुल बहर पढ़ रही थी। उनने इतने ज्यादा इखलास खलूस से, इतना ज्यादा इखलास खलूस से हिजबुल बहर पढ़ा कि वो हिजबुल बहर के आमिल बन गए और इतने इखलास तवज्जो से पढ़ा और इतना दर्द और गुमान से पढ़ा वो आमिल नहीं कामिल बन गए। इन्होंने पढ़ा मुकाबले के लिए, उन्होंने पढ़ा इखलास के लिए। मुकाबले और इखलास में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क, जिसमें लिल्लाहियत हो। मसलन एक बंदा दर्श में आता इसलिए है कि मेरी नौकरी है, मैं अगर सामने ना बैठा तो नौकरी चली जाएगी, या मेरा कोई दोस्त मुझे लाया था उसने कहा सामने बैठना है आना है, अगर वो ना होगा तो इसको इसके जज्बे के मुताबिक मिलेगा। और एक वो है जो सच्चे जज्बे को, सच्चे आजम को और सच्चे इरादे को लेके आया है, उसको उसके मुताबिक मिलेगा। सारी दुनिया के सामने अपने जज्बे छुपा सकते हैं, अल्लाह से तो जज्बे नहीं छुपा सकते। सारी दुनिया के सामने अपना रूप छुपा के बहरूप बना सकते हैं, अल्लाह तो असल देखता है, अल्लाह की नजर तो सच्ची हकीकत पे है, सच्ची हकीकत पे, दिल के अंदर है। और यूं वो ताजर सदाबहार रहा, बहुत कामयाब रहा और उस ताजर की तिजारत को कभी जवाल न आया कि उस ताजर के पास जहां अमानत थी, दयानत थी, सच्चाई और सदाकत थी,
वहां उस ताजर के पास एक हैरत अंगेज दुनिया थी, और वो दुनिया ये थी, उस ताजर के पास वो दुनिया ये थी हैरत अंगेज कि उसके पास हिजबुल बार थी, और वो हिजबुल बार खुद भी पढ़ता था, और वो हिजबुल बार के लिए उसने फुकरा दरवेशों की एक टीम जमात रखी थी जो दिन रात हिजबुल बहर पढ़ते थे, और जिनके हिजबुल बहर से हमेशा आफात, बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां, नाकामियां, तकलीफें और हादसात टले रहते थे, और ये उन हादसात से बचा रहता था। दूसरा वाकया उस किताब में, इस किताब बेचने वाले ने पढ़ा, वो भी सुन ले। कहा एक शख्स के खजूर के बाग था, खजूर के दरख्त थे, खजूर का बाग था और खजूर के दरख्त थे। वो बाग उसके दादा ने लगाया था, वालिद ने सारी उम्र उस खजूर के बाग को, ये भी बसरा का वाक्या है, खजूर के बाग को सारी उम्र सींचा था और इसने भी उसकी खिदमत की थी। इसने महसूस किया कि खजूर के दरख्त खड़े खड़े गिर जाते थे, जल जाते थे, खुश्क हो जाते थे, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। 2-2.5 सालों के अंदर उसके खजूर का बाग चौथाई रह गया, यानी अगर 1,000 खजूरों के दरख्त थे तो चंद सौ चंद रह गए और बाकी सारे जल गए और खुश्क हो गए, बाकी सारे जल गए और खुश्क हो गए। कहा यह परेशान था, माहिरीन को बुलाया, उन्होंने जमीन देखी, मिट्टी देखी, पानी को देखा, और उसकी जो खिदमत गुजारी दरख्तों की होती थी वो सब देखा, पर उन्हें समझ ना आई ये खजूर का दरख्त क्यों मरता जा रहा, हालांकि उसके साथ में और खजूर के दरख्त बसरा में थे। बसरा खजूरों की वजह से मशहूर है पूरी दुनिया में, उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा था, और ये खजूर का दरख्त आखिर क्यों, दरख्त पे दरख्त, दरख्त पे दरख्त जले जा रहे थे, आखिर क्यों? ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा तशीशनाक थी, उस खजूर के दरख्तों के मालिक के लिए बहुत परेशान कौन थे। इसने मन्नत मानी कि या अल्लाह, अगर मेरे ये खजूर के दरख्त फिर से जिंदा हो जाएं, तरोताजा हो जाएं, मैं पूरे 11 साल ये खजूर की फसल गुरबा मसाकीन पे खर्च करूंगा, या सिर्फ मेरे घर वाले खाएंगे, मैं इसको हरगिज हरगिज नहीं बेचूंगा, अल्लाह को इसकी तदबीर और सबील निकाल दे। पूरे 11 साल मैं इसका फल, खजूरें गुरबा मसाकीन फुकरा पे खर्च करूंगा, खुद खाऊंगा, बच्चे घर वाले बिल्कुल फरोख्त नहीं करूंगा। इसने रो रो के अल्लाह से मांगा, रो रो के अल्लाह से। 3 दिन ही नहीं गुजरे थे कि कोई एक फकीर परदेशी आया और आके कहने लगा कि क्या इस बाग में कोई रहने की कोई चटाई मिल जाएगी? मैं फकीर परदेशी हूं, मैं मदीने का मुसाफिर हूं, मदीना जा रहा हूं, फला मुल्क फला वतन से आया हूं, सफर करते करते मैं चाहता हूं कि कुछ दिन बसरा में गुजारूं, औलिया सालेहीन का शहर है, ख्वाजा हसन बसरी हजरत राबिया बसरिया का शहर है और बड़ी हस्तियों का, मैं कुछ दिन यहां गुजारूं। उन्होंने इजाजत दे दी। जब उन्होंने इजाजत दे दी, कहा वो फकीर सारा दिन एक विर्त पढ़ता था। फिर उसने क्या किया, गुठलियां सामने रख के उन उस विर्द को पढ़ना शुरू कर दी। कहा ये हैरान होते थे, ये फकीर क्या करता है, बाग में बिखरी हुई गुठलियां इकट्ठी करता रहता था। कहा कि वो दो चार दिनों के अंदर बहुत सारा ढेर बन गया और उस ढेर को देखते हुए पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता। मुसलसल 11 दिन उसने दिन रात पढ़ा, थोड़ा सा लेट जाता था रात को, दोपहर को थोड़ा सा कैलोला कर लेता था, सूखी रूखी गिरी पड़ी खजूरें खा लेता था, पानी के घूंट पी लेता था, इनसे कोई खाना नहीं मांगता था, अगर कोई दे देते तो खामोशी से बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेता था, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के। 11 दिन मुसलसल उन गुठलियों पे उसने पढ़ा और पढ़ते 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 11 दिन के बाद उठा, उन गुठलियों को झोली में डाला और जो पौधे खुश्क हो चुके थे उनकी जड़ों में दो चार गुठलियां ऐसे डालता जा रहा था और वो वजीफा पढ़ता जा रहा था। ना मालूम क्या वर्क था, क्या वजीफा था। बस उसके बाद जब वो काम कर चुका, रात रहा, सुबह कहने लगा कि आपका बहुत शुक्रिया, ममनून हूं कि आपने मुझे यहां ठहराया, मैंने आपके बाग के लिए एक दुआ की है और आपके बाग के लिए दुआ की है और उस दुआ का असर ये होगा इंशाल्लाह आपके बाग के तमाम पौधे जो हैं वो सरसब्ज और शादाब होंगे और आप इंशाल्लाह खुशहाल होंगे। कहा कि हमने उस फकीर की बात को ऐसी अहमियत ना दी, कोई अहमियत ना दी कि ठीक है उन्होंने बात कह दी वो चले गए। कहने लगे कि मैं मदीना मुनव्वरा जा रहा हूं, अब बाकी जिंदगी वहीं गुजारूंगा, बकी में कब्र बनवाऊंगा और कमली वाली की छांव में रहूंगा, बस मैं मरने जा रहा हूं। ये पहले अमूमी रिवाज था कि लोग मदीना मुनव्वरा चले जाते थे, जिंदगी का बाकी हिस्सा वहीं गुजारते थे और फिर वहीं कब्र बन जाती थी बकी में, आले बैत के साथ, उम्महातुल मोमिनीन के साथ, कमली वाली की बेटियों के साथ, सहाबा के साथ बकी में। कहा कि उसके जाने के कुछ ही दिनों के बाद हमने देखा कि खजूर, मरी हुई खजूरों से सब शाखें निकलना शुरू। हैरान कि दुनिया के जितने भी कामयाब लोग थे जो खजूरों का इलाज करते थे, तदबीरें उनके पास थी, वो नबातात के मुआलिज थे, वो नाकाम हो मायूस हो गए। जैसे हमारे यहां कहते हैं कि कोई वायरस है जो दरख्त को खत्म कर देता है, खड़ा खड़ा दरख्त खुश्क हो जाता है, ताकि वो खजूरें ऐसे सब्ज होने लगी और उनकी शाखें निकलने लगी। उनकी शाखें निकलने, कहा कि मालिक बड़ा हैरान, रोज उठ के सुबह देखे कि इस खजूर से शाख निकल आई, बाकी इतनी रह गई, इससे निकल आई। हत्ता के बजाय जो खजूर मुर्दा हो चुकी थी, जिसके बारे में गुमान और ख्याल ही नहीं था, वो भी सरसब्ज और शादाब होने लगे। कहा कि ये बात हैरान कन थी, बसरा के लोग ये मंजर देखने आने लगे, यहां तक बात फैली, ये मंजर आके देखने लगे, क्या दुनिया में ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। लोग जौक दर जौक ये मंजर आके देखने लगे। कहा, मालिक ने कहा उस फकीर को ढूंढो। उन्हें कहा, वो तो मदीने का राही था, मदीने का मुसाफिर था। कहा कि उसने तेज रफ्तार ऊंटनियां खाना सामान कोई महीने के बाद, तकरीबन एक महीने हो गया, उसने वो सारी चीजें तैयार की और कहा जाओ रास्ते में देखते जाओ जो लोग जिन लोगों के साथ खुदाम गुलामों के साथ उस बाग में वो दरवेश रहा था, कहा उसकी शक्ल पहचानो और इस शक्ल की निशानियां देके उसे तलाश करो और किसी तरह उसको मेरे सामने ला या मुझे उसके पास ले चलो। तो कहा कि उसके पीछे गुलामों का एक पूरा काफला भेजा, तेज रफ्तार ऊंटनियां भेजी और सुबह रफ्तार सारा निजाम भेजा और उसको जाके तलाश करते 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 कहा कि वो उस वक्त तक मदीना पहुंच चुका था। फिर मदीना में उसको तलाश करने लगे तो कहा कि एक फुकरा की रुबात में, रुबात कहते हैं जहां गुरबा फुकरा जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिन झोंपड़ों में रहते हैं, वहां उसका कयाम था। कयाम जब पहुंचे तो उसने हमें पहचान लिया, तुम वही बाग वाले नहीं हो? कहा हाँ। कहा हमने उन्हें तहाइफ दिए और अपने आका की तरफ से और कहा आपकी मेहरबानी, हमारा तो खुश्क बाग सरसब्ज और शादाब हो गया और उसमें हरियाली आ गई और दुनिया देखने आई, बसरा के लोग उसे देखने आए, तो हमारा मालिक आपको मिलना चाहता है। तो उसने कहा तो मालिक से कहना कभी मदीना आए तो हमें जरूर मिले, लेकिन अगर ना भी मिले जो दुआ मैंने पढ़ी थी वो मैं दुआ आपको बख्श रहा हूं, आप भी आइंदा के लिए अब वो लफ्ज सुने जो लफ्ज उन्होंने कहे, आइंदा के लिए फरमाया जिस खातून के का पेट खुश्क हो यानी बांझ हो, जिसकी फसल खुश्क हो, जिसके दरख्त खुश्क हो, जिसकी जिंदगी, वो ये वजीफा पढ़े, वो ये तस्बीह पढ़े और वो इस वजीफे और तस्बीह को अपनी जिंदगी में शामिल करे, इस वजीफे और तस्बीह को अपनी जिंदगी में शामिल करे तो उस जो चीज जो खुश्क हो चुकी है, दूध खुश्क हो चुका है, कहीं का भी दूध, मां का या जानवर का, फसलें खुश्क हो चुकी हैं, दरख्त खुश्क हो चुके हैं और खातून बांझ है, कहा कि सरसब्ज हो जाएगी, शादाब हो जाएगी और तरोताजा हो जाएगी। और फिर उन्होंने कहा, उस दरवेश ने कहा ये दुआ मुझे हजरत खिजर ने सिखाई थी, हजरत खिजर ने सिखाई थी और हजरत खिजर ने फरमाया था ये दुआ मैंने शेख अबुल हसन से ली थी शाजली रहमतुल्लाह से। और कहा कि फिर ये दुआ हजरत खिजर फरमाते हैं मैंने बराह रास्त हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी ली थी, लिहाजा मुझे ये हजरत खिजर ने सिखाई थी और मैंने उनसे सीखी थी। जाओ जब भी कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई उलझन ऐसी हो जिसमें तुम समझते हो कि मेरी जिंदगी में कोई राहत नाम की चीज नहीं, इस दुआ को दीवाना वार पढ़ना, ये लफ्ज कहा दीवाना वार पढ़ना, तुम्हारी मुश्किल भी हल हो जाएगी, तुम्हारी उलझन भी दूर हो जाएगी, तुम्हारी नाकामी भी खत्म हो जाएगी। उस किताब में एक और वाकया, जो उस कुतुब फरोश की दिलचस्पी का जरिया बना और वाकया था, कहा कि एक गरीब आदमी था जो दरियाए नील के किनारे रहता था और बहुत गरीब था, फकीर था। कहा उसके पास एक भेड़ थी, एक भेड़ थी। वो उसी भेड़ को पालता था, उसका दूध पीता था, बस उसका सारा सरमाया वही था, सारा सरमाया। का एक दफा बारिश हो रही थी, कहीं से उसने सुना था कि बारिश के दौरान दुआएं कबूल होती हैं। कहा कि भेड़ के भीगे बालों पे हाथ फेर रहा था, ऐसे हाथ फेर रहा था और उसके ऊपर से पानी हटा रहा था और अल्लाह से कह रहा था, या अल्लाह कोई ऐसा हो सकता है जितने इसके बाल हैं उतनी मुझे भेड़े दे दे। ऐसे हाथ फेर रहा था और हाथ फेरते हुए दुआ कर रहा था कि या अल्लाह कोई ऐसा हो सकता है जितना इसके बाल हैं उतनी मुझे भेड़े अता कर दे। काके फिर अपने ऊपर हंस पड़ा, क्या कह बैठा है, चलो तू अल्लाह से 10-20 भेड़े ले ले, जितने बाल हैं इतनी भेड़े तेरे लिए मुमकिन है। कहा के खामोश हो गया, पर कोई लम्हा कबूलियत का था, बोल था निकल गया, लफ्ज था निकल गया, हर्फ थे निकल गए, कोई औकात कोई घड़ी थी कबूलियत निकल गया। क्योंकि वो शख्स अपनी भेड़ को चराता था, दरियाए नील का पानी पिलाता था, घास खिलाता था, उसी में उसकी जिंदगी थी, बाकी वक्त मजदूरी करता था। सफेद पोशी कस्मा पुरसी में उसकी जिंदगी के दिन रात यूं ही गुजर रहे थे। कहा एक दफा एक काफला गुजरा और कहा कि काफले ने देखा तो उसके पास भेड़ है, मोटी ताजी तरोताजा सेहतमंद है, क्योंकि दिन रात वो उसकी खिदमत करता था। उन्होंने उससे कहा कि इस भेड़ को हमारे पास बेच दे, इसको बेच दे। कहने लगा, नहीं मैं नहीं बेचता, इसी से मेरी मोहब्बत है, यही तो मेरा एक जिंदगी का साथी है, ये छोटा सा बच्चा था, मैंने इसको पाला था, इसके साथ मेरी मोहब्बतें वाबस्ता हैं, मोहब्बत है। कहा उन्होंने इसरार किया, ना लिया तो उन्होंने पकड़ा, इसके सामने भेड़ पे छुरी चला दी, उसको जबा किया, जबा करके खाल उतारी, खाल उठा के इसको फेंक के दे दी, ये खाल ले जा तुझे कहा था। वो दरअसल डाकुओं का काफला था, इसे पता नहीं था। कहा कि खाल ले जा, इस खाल के अंदर जो करना है कर ले, ये निशानी दे रहे हैं, और वो भेड़ खा के चले। कहा कि ये खाल ले आया, इसने खाल को खुश किया, दिन रात उस खाल में मुंह छुपा के रोता था और कहता था, मौला मैंने तो तुझसे मांगा था कि इस भेड़ के बालों के बराबर मुझे भेड़े आता फरमा, तूने तो वो एक भेड़ भी मुझसे छीन ली। एला मैं तेरा शिकवा नहीं करता, पर मुझ कमजोर से इतनी बड़ी, इतना बड़ा इम्तहान और मुझ कमजोर से इतनी बड़ी आजमाइश, एला मैं तेरा शिकवा नहीं करता, बस रोता रहता था। और कहा जिस जगह उन्होंने भेड़ को जबा किया था वो सारा दिन वहीं बैठता था और अपनी भेड़ के खून को सूंघता था और उसकी खाल में मुंह छुपाता था। भूखा प्यासा खा लिया ना खाया, पी लिया ना पाया, वहीं सो जाता था। कुछ ही अरसे के बाद वहां से काफला गुजरा, उसने देखा तो उसकी फरियाद, उसकी हाय, तो काफले ने पूछा, ये भेड़ का की खाल और तू इसमें मुंह छुपाए रो रहा, तेरी हड्डियां निकली हुई हैं, तू कौन है, क्या है? तो उसने वो सारा वाक्या सुनाया। उसने कहा, मैं एक छोटे से भेड़ के बच्चे को पाला था और फिर उसको बड़ा किया। और एक दफा बारिश हो रही थी, मैंने सुना कि बारिश में दुआएं कबूल होती हैं, तो मैंने इस पे हाथ फेरते हुए कहा था कि अल्लाह, ऐसा मुमकिन है कि इस भेड़ के बालों के बराबर मुझे भेड़े दे दे? तो कहा, फिर मैं अपनी बात पे खुद ही हंसा था, शायद अल्लाह को मेरे हंसने में नाराजगी हुई, अल्लाह ने मुझसे वो भेड़ भी छीन ली। ऐसे ऐसे लोग आए, वो थे डाकू चोर, उन्होंने मुझे पहले पैसे की बात की, नहीं दी तो वो भेड़ खा पी और उसकी खाल मुझे दे के चले गए। अब उस भेड़ के फिराक और जुदाई और मोहब्बत में मैं रोता हूं। ये मेरा हाल है, ये मेरी कहानी है और ये मेरी दास्तान है। कहा कि एक साहब आगे बढ़े, उन्होंने कहा मेरे साथ चल, मैं तुझे कुछ भेड़े देता हूं, तुझे हदिया करूंगा, मैं कोई दूर नहीं रहता, मैं तेरी खातिर काफले से वापस हो जाता हूं, मैं तुझसे इतने गांव दूर या इतने कोस दूर रहता हूं, मेरे साथ चल, तुझे कुछ भेड़ों दूंगा और भेड़ों के साथ भेड़ों की बरकत के लिए एक तुझे दुआ भी दूंगा, तेरी भेड़ें बढ़ जाएंगी। और कहा मैं तुझे नस्ल वाली भेड़ें दूंगा, तू मेरे साथ चल। इन्होंने उसको तसल्ली दिलाई, उनके साथ चल पड़ा। पता चला कि वो अपने गांव का सरदार था, बड़ा था, उसका वहां बहुत इज्जत वकार, बहुत माल था। उसने एक छोटा सा रेवड़ भेड़ों का मुझे दे दिया और देने के बाद कहा, देख ये रेवड़ भी दे रहा हूं, ये एक दुआ है जो चमड़े पे लिखी हुई है, चमड़े पे लिखी हुई है, मेहनत करके इसको याद कर ले, मेहनत करके इसको याद कर ले, और याद करने के बाद इस दुआ को पढ़ा कर, सारा दिन पढ़ा कर, सारा दिन पढ़ा कर। पढ़ते पढ़ते इस दुआ को सारा दिन पढ़ा कर और इंशाल्लाह तेरा काम हो जाए। कहा रेड़ों का रेवड़ लेके मैं आया, घर पहुंचा, वो दुआ मैं रास्ते में याद करता है, करते करते वो दुआ मुझे याद हो गई, क्योंकि इंसान को जब शौक होता है, शौक में हर चीज याद हो जाती है, वो दुआ याद हो गई। और याद होने के बाद कहा मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। कहा चंद साल ही गुजरे थे, मेरी नजर जहां जाती मुझे भेड़े नजर आती, मेरी नजर जहां जाती मुझे भेड़े नजर आती। कहा अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी बरकत दी कि भेड़े मरती नहीं थी, बच्चे ज्यादा देती थी, सेहतमंद रहती थी और दूध बहुत अच्छा होता था और उनमें फैलाव बढ़ोतरी हद से ज्यादा होती थी। कहा कि मैं उनकी नस्लों को देखूं या दुआ? कहा उससे बड़ी भी नस्लें वाली भेड़े मैंने देखी, ये सब इस दुआ की बरकत से, मैंने देखा कि वो भेड़े बहुत फली फूली। और कहा लोगों ने फिर मुझसे ये दुआ ली, मैंने उन्हें वो दुआ सिखाई, जिसने भी वो दुआ पढ़ी और दिन रात पढ़ी और पढ़ी और दिन रात बहुत ज्यादा, कहा कहने लगा उनका भी माल ऐसे हो गया, जिधर देखते थे माल ही माल था, जैसे मैं जहां तक मेरी नजर जाती थी मेरी भेड़े ही भेड़े होती। एक वाकया और सुन, वो वाकया मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी उस्ताद थे, उस्ताद थे, उनका नाम था उस्ताद अब्दुल अजीज साहब। मुझे याद है मेरे कान अक्सर पकड़ के मुझसे बातें करते थे, कान पकड़ के बातें करते, छोटा सा था, काली मिर्च में देसी घी में कद्दू पका हुआ खाते थे, अम्मा रहमतुल्लाह अलैह पका के भेजती थी, रोटी पकी हुई उस पे घी लगा हुआ और वो कद्दू वो खाते थे। अपना वाकया सुना, कहा कि मैं एक देहाती मजदूर गांव का रहने वाला ऐसा शख्स कि जो वहां थोड़ा सा उसके पास कोई हिस्सा था घर का, कोई जायदाद कोई माल कोई चीजें नहीं थी, मेरे वालिद की बकरियां थी और मेरा वालिद कहता था तो बकरियां चरा। मैं मस्जिद में एक मियां जी थे उनके पास पढ़ने जाता था, मैंने कुरान पढ़ लिया, वालिद का इसरार था तो बकरियां चरा, मेरी चाहत थी कि मैं इल्म हासिल करूं। वालिद मुझे रोज शाम को बकरी अगर भूखी होती थी तो मारता था, डांटता था कि तूने बकरियां सही नहीं चराई, बकरियों का पेट भरा हुआ क्यों नहीं, बकरियां भूखी क्यों आई हैं। वालिद इस पे नाराज होते थे। कहा मुझे शौक था इल्म का और मैं इल्म हासिल करना चाहता था, तो कहा कि मुझे पता चला कि एक जगह साहिब इल्म है, वो एक छोटा सा घर है उसमें रहते हैं, फला हस्तियों से उन्होंने उलूम हासिल किए हैं, तो कहा कि वो मैं उनके पास जाता, बकरियों को एक तरफ खड़ा करके मेरे पास एक लाठी होती, उनके पास एक कुल्हाड़ी थी, वो मेरी लाठी पे लकीर लगा देते थे कि आज का सबक ये है और ये लकीर है, कल इस लकीर को देखूंगा, अगर तेरा सबक याद हुआ तो अगली लकीर लगाऊंगा लाठी पे, अगर तेरा सबक याद ना हुआ तो उससे अगली लकीर नहीं लगाऊंगा, पहले पिछला सबक याद कर। तो कहने लगे कि मैं उस लकीर को सारा दिन फिर याद करता रहता था और मैंने कई उलूम की किताबें उनसे पढ़ ली, शौक था उस उस्ताद से पढ़। कहा कि कई साल उस उलूम की किताबें बकरियां चराते हुए पढ़ी, बकरियां चराते हुए पढ़ी। कहा एक दफा वो कहने लगे कि अब्दुल अजीज मेरी कश की दुनिया कह रही है तेरा मदफन जन्नतुल बकी है, तू जन्नतुल बकी में दफन होगा। और वाकई हुए 1970 के बाद, तेरा मदफन जन्नतुल बकी है, तू वहां जाएगा, तूने उलूम पढ़ लिए हैं, जिन दिनों में तू वहां जाएगा वहां हालात और गुर्बत होगी, तुझे मैं एक दुआ सिखा देता हूं, इस दुआ को याद कर ले, जब हालात गुर्बत हो तंग दस्ती हो लूट मार का दौर, तू इस दुआ को पढ़ना, लूट से बच जाएगा, लूटने वालों से बच जाएगा, तेरी जरूरतें गैब से पूरी होंगी, तुझे इज्जत दौलत रिस्क और हमेशा बरकतें मिलेंगी और गैब से तेरे हर मुश्किल निजाम का इंतजाम होगा, मुझसे ये दुआ ले ले। कहा बाबा जी थे उस्ताद थे और उनको मुझसे मोहब्बत थी कि इसको इल्म से मोहब्बत है, और मैंने बकरियां चराते चराते कई इल्म की किताबें उनसे पढ़ ली, थोड़ा थोड़ा सबक देते थे मैं याद करता था। और कहा बाज़ों का ऐसा होता था सबक याद करके फिर पहुंच जाता था कि उस्ताद जी अगला सबक दें, वो फरमाते थे कल वाला सुना मैं कल वाला सुनाता था, कहा उससे गुज़िश्ता कल वाला सुना मैं वो भी सुनाता था, कहा उससे गुज़िश्ता कल वाला सुना मैं वो भी सुनाता था। जाग रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, माशाल्लाह, कहा मैं वो भी सुनाता था, वो बहुत खुश होते थे। और उनकी मैं एक बात बता दूं, फरमाते थे जो बकरियों को देखेगा उसका हाफसा मजबूत होगा, उसकी नजर ताकतवर होगी, और जो बकरियों का दूध पिएगा وہ دنیا کا صحت مند انسان ہوگا، کوئی بیماری اس کے قریب نہیں آئے گی۔ جو بکریوں کو دیکھے گا، حافظہ مضبوط ہوگا، نظر تیز ہوگی، صرف دیکھے گا۔ میرے آقا نے فرمایا بکری میں برکت ہے، اور برکت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، برکت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں دو دو دفعہ بھی سبق لاتا تھا، اور پھر استاد نے مجھے دعا دی اور کہا کہ ایک ہی وقت میں میں نے دعا سنی، ان کے سامنے چند بار دہرائی، ایک دو غلطیاں ہوئیں پھر بتایا، کہا تھوڑی دیر میں میں نے دعا یاد کر لی۔ دوسرے دن آیا تو انہوں نے وہ لفظ کہتے تھے لاٹھی پہ ٹک لگایا، ٹک لفظ کہتے تھے ٹک، کہا انہوں نے مجھ سے دعا سنی اور لاٹھی پہ بڑا سارا ٹک لگا کے، کٹ لگا کے، نشان لگا کے کہا جا آج کے بعد میرے پاس نہ آنا، میں نے دنیا کے سارے علوم تجھے مستحضر، یعنی دنیا کے سارے علوم تیرے سینے میں اتار دیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے تو چند کتابیں پڑھائیں، دنیا کے علوم سارے سینے میں آپ فرماتے ہیں کیسے اترے؟ کہا کہ تجھے یہ جو دعا یاد کرائی ہے اس میں دنیا کے سارے علوم ہیں، اس کے پڑھنے والے پہ علوم خود ظاہر ہوتے ہیں، خود ملتے ہیں، اس کے پڑھنے والے کو علوم سیکھنے کی ضرورت نہیں، لدنی غیبی علوم اس پہ ظاہر ہوتے ہیں، اس کی زبان پہ ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے دل پہ امڑتے ہیں، اور دنیا اس سے فیض یاب ہوتی ہے۔ کہا کہ استاد نے کہا جا، قدرت کا نظام ایسا بنا۔ میں اس دن اپنے بیٹوں کو اس جگہ لے گیا، بھائی صاحب بھی ساتھ تھے۔ میں نے کہا جب ابا جی کے استاد جا رہے تھے، یہاں ٹالی کا درخت تھا، اس کی شاخ سے میں جھولے جھول رہا تھا، شیشہ موتی نا ٹالی، اس کے درخت تھے، اس کی شاخ پکڑ کے، اتنا چھوٹا تھا کہ شاخ سے پکڑ کے میں جھولا جھول رہا تھا۔ مجھے یاد ہے فرمایا، اب ان کے الفاظ ہیں، فرمایا میں اجنبی بن کے بحری جہاز پہ گیا سعودی میں، وہاں مجھے حالات کی سختیوں بحیثیت پردیسی اور مسافر کے تلخیوں نے گھیرا، کہا کہ میری بیوی بچے گھبرا، یہاں تو کچھ رسک تھا، وہاں تو وہ بھی چلا گیا، تو کہا میں کیا کرتا، کہیں گھر میں، کبھی مسجد نبوی میں، کہیں بازار میں، جہاں موقع ملتا میں دعائے حزب البحر پڑھنا شروع، کبھی تین بار، کبھی پانچ بار، کبھی سات بار، کبھی نو بار، کبھی دس بار، کبھی کتنے بار، کہا میں پڑھتا اور پڑھ کے کہتا اللہ آج اتنا آٹا، اتنا گوشت، اتنا گھی، اتنا کھانا، اتنی اتنی چیزوں کو ضرورت ہے، اور فلاں بچے کے میں نے کپڑے دیکھے پرانے ہو رہے ہیں، اس کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، گھر کا مولا میں نے کرایہ بھی دینا ہے، اور اپنی ضرورتوں کا نظام بھی بنانا ہے، اور فلاں بیٹے کی شادی کی عمر ہو گئی وہ بھی کرنی ہے۔ کہا کہ میں حزب البحر پڑھتا، اتنی چیزیں، اتنا آٹا، اتنا کھانا، اتنا سارا نظام، کہا مجھے مل جاتا تھوڑی مزدوری پہ، تھوڑی محنت پہ، تھوڑی کوشش پہ، اور ہم ان وقتوں میں جب عمومی دولت نہیں تھی، عمومی مال نہیں تھا، عمومی کچھ چیزیں نہیں تھیں، اور ہمیں عمومی وہ نعمتیں ملتی تھی۔ کہا ایک دفعہ میں نے قصد کیا، ارادہ کیا کہ میں مدینہ منورہ سے दूर एक बस्ती मुझे उसका नाम भूल गया, वहां जाऊं। वो इसलिए कि एक प्रवेश था जो मस्जिद नबवी में मेरे साथ था, वो बूढ़ा हो गया, उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं था, बाज औकात उसकी पेशाब इजाबत खता हो जाती। तो फिर उसने कहा कि अब मैं अपने उस गांव में जाऊंगा, वहां का देहाती बद्दू था तो मैं वहां जा रहा हूं। कहा मेरा उससे उंस था, कुछ ही दिन गुजरे, उसके बारे में बेताबी हुई, मैं अकेला चल पड़ा, कोई सवारी नहीं, कोई ज्यादे राह नहीं, जेब में कोई पैसे नहीं, थोड़े से कहा मेरे पास रियाल थे, मैं चल पड़ा। जब मैं कहा वहां चल पड़ा, चलते चलते आगे कुछ लोग मेरे सामने आ गए, उन्होंने पकड़ के मेरी जेब से वो चंद रियाल थे वो निकाले, और निकालने के बाद कहा कि वो चले गए। मैं समझ गया कि ये लुटेरे थे, और ये शुक्र है इन्होंने मेरे कपड़े नहीं उतारे। कहा कि वो सब कुछ चले गए। अब परेशान हाल एक टीले के साथ बैठा, और अचानक मेरी आंखों के सामने नजारा आया कि कोई कहने वाला कह रहा, और वो कौन कह रहा, वही उस्ताद जो लाठी पे टक कट लगाता था, और कट को लफ्ज क्या कहता था, टुक टक टुक लगाता था। कहा कि वो उस्ताद की आवाज आई, तुझे हिजबुलबार आज के दिन के लिए याद करवाई थी, या तुझे किसी और दिन के लिए? गुस्से से आवाज आई, गुस्से से आवाज। तो कहा बस एकदम मैं हिजबुलबार पढ़ना शुरू हो गया। कहा कि जो वो विजदानी कैफियत थी जब मैं लुटा हुआ था, कुछ था नहीं, ना आगे जाने का ना पीछे जाने का, वो मुझे विजदानी कैफियत जो मिली वो आज तक नहीं मिल सकी। वज था ना, विजदान था, और बेकली और बेकरारी थी। और कहा कि मैंने बस पढ़ना शुरू किया। कहा थोड़ी ही देर गुजरी, मुझे महसूस हुआ कोई काफला आ रहा है, शोर है ऊंटों का, उनकी घंटियों का और उनकी आवाज का, और दूर से नजर आया धूल भी उड़ रही है। और कहा कि काफला मेरे नजर मेरे करीब से गुजर गया। कहा कि एक ऊंट वाला वापस, उसके कौन हो तुम? मैंने कहा परदेशी हूं, फलाम बस्ती में जा रहा हूं। कह रहे हम भी वहां जा रहे हैं, क्यों बैठे हो? कह रहे ऐसे ऐसे लुट गया हूं। कहा मेरे ऊंट पे बैठ जा। कहा ऊंट पे बैठा, आधे दिन से भी कम का सफर उन्होंने वहां पहुंचाया, और कहा पहुंचाते पहुंचाते उसने मुट्ठी भर नोट मेरी जेब में डाल दी, और वो काफले के साथ ऊंट का काफला चला, वो वहीं आगे कहीं गांव के किसी कोने में रहते थे चले गए। कहा मैंने जो जेब में हाथ डाला तो वो बड़े बड़े नोट थे, छोटे नहीं, और इतने बड़े नोट थे जिनको मैं हसरत से देखा करता था। उस दोस्त के घर गया, पता चला कि वो तो फौत हो गया, और वो आपको बहुत याद करता था। कहा मैं 3 दिन सोगवार उसके घर में रहा, पता चला कि उसके घर में अमूमी गुर्बत है। मैंने कहा जिस हिजबुल बहार की बरकत से इतने बड़े नोट मिले, आधे इनको दे दूं, आधे खुद रख लूं। कहा कि वो आधे नोट मैंने उन्हें दिए तो उनकी भी हैरत की इंतहा, इतने नोट कैसे मिल गए? तो कहा मैंने उन्हें वो नोट दिए। अब मैं किसी काफले के इंतजार में था कि कोई काफला ऐसा हो जो मुझे मिले, कोई काफला ऐसा हो जो मुझे मिले और फिर मुझे मदीना मेरे घर वालों के पास पहुंचा दे। कहा कि मैं रास्ते में आके बैठ गया, जहां से काफले गुजरते थे आके मैंने फिर हिजबुल बहर पढ़ना शुरू कर दिया। कहा पढ़ते पढ़ते कुछ देर ही गुजरी थी, कुछ लोग थे, उनकी सवारियों के पीछे दो दो अफराद थे। एक सवारी ऐसी थी जिसपे एक बंदा था। कहा मैंने ऐसे देखा तो उन्होंने मेरी मुतलाशी नजरों को भांप लिया। कहा कहां जाने का इरादा है? कहा मदीना में। कहा हम भी मदीना में हजूर के रोजे के दीदार के लिए जा रहे हैं, सलातो सलाम के लिए, अब भी आ जाओ। कहा मैं उनके पीछे बैठ गया और आधे दिन में मदीना पहुंच गया और कहा कि मैं आज भी अपने उस उस्ताद को याद करता हूं जिसने मुझे चंद किताबें पढ़ाई, पर चंद किताबों के बाद उसने मुझे हिजबुल बहर पढ़ाई और हिजबुल बहर भी ऐसी पढ़ाई कि वो हिजबुल बहर मेरे तन मन में उतर गई और मैंने उससे फिर फैज पाया, फायदा पाया। और कहने लगे आज जब भी मुझे जरूरत हो, वो दुनिया का कोई कोना हो, बस मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं और पढ़ते पढ़ते अल्लाह मेरी जरूरतों को गैब से पूरा कर देते। ये तो वाकया मैंने बयान किया अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के, उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह का। अब उस कुतुब फरोश की तरफ आता हूं जिसने हमें तीन वाक्य सुनाए और उसके साथ क्या बीती उस कुतुब फरोश को जो पुरानी किताब लेके पढ़ रहा। कहा जब मैंने ये वाक्य सुने तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं क्यों ना, कहा मैंने इरादा कर लिया कि मैं इस किताब को नहीं बेचूंगा। मैं अरबी पढ़ा हुआ नहीं था, मैं अटक अटक के उसको पढ़ने लगा, उस दुआ को अटक अटक के पढ़ने लगा और कहा कि मेरे पास एक हाफिज जी आते थे, किताबें पुरानी लेने के शौकीन थे, वो आए तो मैंने उनसे कहा जो तुझे सबसे अच्छी किताब लगी वो उठा ले, तुझे मैं हदिया दूंगा, लेकिन मुझे ये दुआ याद करा दे। बड़ा खुश हुए तो कहा कि मैंने उनसे वो दुआ सीखी। वो साहब कुतुब फरोश कहने लगे मैंने उनसे वो दुआ सीखी और वो दुआ सीखी उन्होंने मुझे याद कराई, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। और कहते हैं पढ़ते पढ़ते मेरे हाल ये हो जाता था, मैं बहुत सी चीजें भूल जाता था लेकिन मुझे दुआ नहीं भूलती थी। यानी इतना ज्यादा कि मुझे दिन का चढ़ना भी भूल जाता था, दिन का उतरना भी भूल जाता था, दुआ में ऐसा मुस्तगरक, ऐसा गर्क था, भूल जाता। और बस मैं दुआ पढ़ता रहता था। अच्छा मुझे क्यों पढ़ रहा था? मुझे उस पर शौक हो गया कि मैं उसको पढ़ता रहता था। कहा कुदरत का करना ऐसा हुआ, एक दफा एक साहब आए जो किताबों के कदरदान थे, मुझसे कहने लगे ये सारी किताबें जितनी भी हैं मैं लूंगा, जो पैसे मांगो बताओ। कहा कि उसके शौक को देखकर मैंने उसे ज्यादा पैसे बता दिए। मुस्करा के कहने लगा पैसे तो ज्यादा हैं, माल तो ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें ये माल इतने पैसे दूंगा, क्यों लगता ऐसे है कि तू जरूरतमंद है। कहा मुझे पैसे दे के चला गया और एक लफ्ज कह गया, कहा इन पैसों को खर्च करते रहना, जमा ना करना, ये पैसे मैंने हलाल के हैं और ये तेरे पास से जाएंगे नहीं और तुझे बरकतें देंगे। कहा कि ऐसा ही हुआ, मैं हिजबुल बहर की उसको ताकत और बरकत समझता हूं। कहा कि वो पैसे ऐसे थे कि इतने बड़े कि मैंने किताबों की एक दुकान बना ली और किताबों को मैंने बहुत सलीके से रखना शुरू किया और किताबें इतनी मुझे मिली, इतनी मिली कि एक बहुत बड़ी दुकान बन गए। और वो दुकान क्या थी? मेरे एक उस्ताद थे उस्ताद थे जो मुझे अरबी और फारसी पढ़ाते थे, उनका वो पुराने रीडर थे हाई कोर्ट के, फारसी अरबी के वो पुराने स्टाम्प पढ़ने का फन जानते थे। कहते थे मैं तांबे का स्टाम्प भी पढ़ लेता हूं। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें हमारे लिए मुकरर किया था अतालीब के तौर पे कि वो हमें अरबी फारसी सिखाएं, क्योंकि हमारी कुतुब और उलूम का खजाना अरबी और फारसी में है, इसलिए मैं थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध रखता हूं, ज्यादा नहीं जानता। वो खुद मुझे फरमाते थे, उन्होंने मैंने उनसे खुद सुना अपने उस्ताद मोहतरम से, फरमाते थे कि मैं उस कुतुब खाने कुतुब फरोश की दुकान में जाता था, मैं कहता था रात को मुझे दुकान में बंद कर दो, का सारी रात सर्दियों की, सारी रात सर्दियों की मैं दुकान में चिराग जला के या लालटेन ले जाता था, मैं सारी रात किताबें पढ़ता था, सुबह वो बंदा आता तो मुझे निकाल देता था, सारी रात ना भूख ना हाजत ना पेशाब, तलब इतनी होती थी किताबें पढ़ता था। उस कुतुब फरोश की जो पहले सड़क पे कुतुब फरोश था और जिसको हिजबुल बहर ने शहर का सबसे बड़ा कुतुब फरोश बनाया, आज भी उसकी दुकान है, आज भी है उसकी दुकान, आज भी, और बहुत बड़ी है, मैंने देखी है। और उसकी जो बुनियादें थी वो हिजबुल बहर की दुआ थी, और हिजबुल बहर की दुआ का वो कमाल था कि करीम ने उसके लिए गैबी मदद भेजी, गैब से तैयब ताहिर रिस्क भेजा, और तैयब ताहिर रिस्क फला फूला। अब उसकी वो फौत हो गया, अब उसकी नस्लें हैं और दुनिया सारी की सारी किताबें पढ़ने से दूर है, लेकिन वो बंदा आज भी किताबें बेच रहा है। हिजबुल बहर, हिजबुल बहर के वाक्य तो मेरे सीने में भरे हुए हैं। एक घंटा पांच मिनट हो गया, पता चला ये पिशावर में एक बाजार है जिसका नाम है किस्सा खानी बाजार। ऐसे किस्से सुनाते थे, रात ही बीत जाती थी, बंदे बैठे होते थे, बीती जिंदगी के ऐसे किस्से सुनाते थे। और आप हिजबुल बहर के सच्चे किस्से, सच्चे लफ्ज और सच्ची दुनिया के सच्चे राज सीख रहे हैं। और सुन, एक साहब मेरे पास आए, एक साहब आए, ये छोटे छोटे तिनके थे उसके पास, नीम की शाखों के, वो शाखें जिन पे पत्ते लगे हुए होते हैं, अगर उन शाखों को छोटी छोटी हटा दें, उनसे पत्ते उतार लें और उनको खुश्क कर लें, तो बाज लोग उन शाखों को बतौर खिलाल भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो शाखें पतली पतली कड़वी होती हैं और उससे दांतों को कीड़ा नहीं लगता। वो बंदा मेरे पास शाखें जमा करके ले आया, इतने सारे, एक मुट्ठी के करीब भरी हुई मुट्ठी थी, शाखें जमा करके लाया, मुझसे कहने लगा ये शाखें हमारे यहां बतौर खिलाल इस्तेमाल होती हैं, बड़ी साफ सुथरी खुश्क नीम की शाखें, तो मैं आपके लिए लाया हूं, इसे कपड़े से साफ करके बेहतरीन और कागज में लिपटी हुई थी, ये मेरी तरफ से आपको हदीया है। तो मैंने पूछा आप क्या करते हो, कहा लकड़ियां घास और मजदूरी करता हूं। पहले क्या करते थे, कहा फलां जगह कुछ कुरान पढ़ा, कुछ इब्तदाई किताबें पढ़ी, गरीब था, फिर घर में रोटी नहीं होती थी तो मजदूरी करता हूं, और बाप भी मजदूरी करता था, पर इस तरह मजदूरों की तरह मेरी जिंदगी गुजरी, आज भी मजदूरी कर रहा हूं। तो आपसे मुलाकात करते हुए मुझे ख्याल आया कि मैं आपके लिए खिलाल ले जाऊं, दांतों के लिए। इन शाख का थोड़ा सा आप तोड़ेंगे दांत में खिलाल, तो ये कड़वा होगा, इससे कभी दांत को कीड़ा नहीं लगेगा। मेरे दिल में अल्लाह ने एक बात डाली, मैंने कहा क्यों ना मैं इसको हिजबुल बहार का अमल दे दूं और इसको कह दूं बस तो खुला पढ़, और जब भी सफर की 6-7-8 आए तो इसका चिल्ला कर लिया कर। मैंने उसको समझाया, मैं कहा हिजबुल बहार का नाम सुना? कह रहे सुना है, पता नहीं क्या है। मैंने बताया ये हिजबुल बहार है, इसको तू पढ़ लिया कर। कहने लगा क्या फायदा होगा? मैंने कहा यही शाखें जो तेरे हाथ में मेरे हाथ में है, हर शाख सोने की बन जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, सोने की बन जाए, दूसरे लफ्जों में तेरा रिस्क वसी होगा, तेरे रोज रिस्क में वसत आएगी। उसको मैंने इसके फायदे बताए, फवायद बताए, फजाइल बताए, बरकात बताई, इसके कमालात बताए और दानिश्ता बताए। अगर मैं ऐसे दे देता तो उसके अंदर वो यकीन और कदरदानी ना होती जो फजाइल फवायद बरकात सुन के होती है, क्योंकि इंसान नफे का गुलाम है, नफा हो तो वो फौरन मुतवज्जे हो जाता है, इंसान नफे का गुलाम। मैंने उसको फवायद फजाइल बताए, बरकात बताए और कहा कि इसको पढ़ और खूब पढ़, और जब सफर में 3 दिन इसका चिल्ला भी कर लिया कर। वो चला गया, चला गया। कुछ ही अरसे के बाद मेरे पास आए। ये बात मैं आपको 1993-94 की बात है, गालिबा 93 या 94 की बात है। मेरे पास आया, गरीब देहाती था, मेरे पास आया तो उसकी जाहिरी हालत बोल रही थी कि खुशहाली के दरवाजे खुल गए, जाहिरी हालत बोल रही थी। उसने जो वाकया सुनाया बड़ा दिलचस्प था। कहने लगे आपके हां गया, मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, कभी भूल जाता था कभी पढ़ लेता था, और कहा ख्वाब में आके कहते थे तुझे कहा है ना छोड़ तू पढ़, कहा फिर पढ़ना शुरू कर देता था। और फिर एक दफा मैंने अज्म किया कि मैं ये दुआ पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। कहा मेरा एक पुराना दोस्त था, वो एक दफा अचानक मेरे पास आया, जो घर में दाल दलिया था मैंने उसके सामने रखा, उसने मेरे हालात देखे, हालात देख के कहने लगे तू बैलों का काम कर, नली नाड़ी के बैल, खुशाब में एक जगह है, एक का नाम नली है एक का नाम नाड़ी है, गांव है वहां के बैल मशहूर हैं। कह रहे मैं भी वहां का काम करता हूं और बहुत बहुत मुझे जो है मैंने माल कमाया पैसा कमाया, मैं भी करता और तू उसका काम कर। कह रहे मुझे आता नहीं, कह रही ये छोड़ मैं तेरी तुझे साथ ले जाऊंगा, उनके आमने सामने करा दूंगा, वो तो जो उधार पे भी देंगे मेरा इतबार है, और तू बेच देना उसमें नफा मिलेगा कारोबार कर। कहा मुझे वो ले गया उसी गांव में, मुझसे कहने लगा, उनसे कहने लगा ये मेरा दोस्त है, इसका लेन देन मेरे जिम्मे है, ये जितने भी बैल ले इन बैलों को इसको दे देना, और बस ये बैल जो है ये जितने भी ले बेचे। कहा कि मैं 2 बैल ले आया और 2 बैल लेके मैंने उन बैलों को चंद जगहों पे ले गया, कीमत लगी, एक बैल बिक गया और उसमें से मुझे 1350 बचे। कहा कि मेरे लिए 1300 1350 बहुत बड़ी बात थी। कहा मेरे हाथ में जब वो 1350 आए तो मेरे हाथ कांप रहे थे। कहा मेरी हिम्मत बढ़ गई, दूसरे बैल में से भी मुझे अच्छे पैसे बच गए। मैं असल कीमत लेके मालकों को दे आया, उनका एतबार बढ़ गया और घर में कुछ राशन पानी खाना दे गया। फिर मैं और बैल ले आया। कहा बैलों के बाद उन्होंने मुझे कहा तो बैल ले जाता है तो यहां हमारे पास भैंसे भी हैं, गाय भी है, इसका कारोबार भी कर, लोग तुझसे लेंगे। कहा मैं वो कारोबार भी करने लगा। कहा अब आलम यह है कि मुझसे लोग आते हैं और कहते हैं इस नस्ल का इतना बड़ा इस क्वालिटी का हमें बैल चाहिए या इतने दूध देने वाली हमें भैंस गाय चाहिए। 3 वक्त हमेशा भैंस का दूध दोया जाता है, फिर वो दूध मुकरर होता है। 3 वक्त दोया जाता है हमेशा, उसूल है। तो अब कहा कि मैं वही काम करता हूं और खुशहाली है और बहुत ज्यादा और रिस्क वाफिर है। और कहा कि आप इस दुआ से मुझे इश्क हो गया है, इस दुआ से मुझे मोहब्बत हो गई है। और कहा कि हम खानदानी गुर्बत में थे, खानदानी फकर में थे और खानदानी तौर पे गुर्बत और तंगदस्ती थी। कहा कि अब खानदानी गुर्बत का ऐसा जादू टूटा है। और फिर खुद ही कहने लगा कि मेरा दिल कहता है आज के बाद मेरा खानदान कभी गुर्बत नहीं देखेगा। खुद ही कहने लगा, मेरा दिल कहता है कि आज के बाद मेरा खानदान कभी गुर्बत नहीं देखेगा, यानी कभी तंगदस्ती मुफलसी फक्र नहीं देखेगा। आज के बाद मेरा खानदान कभी गुर्बत फक्र मुफलसी और तंगदस्ती नहीं देखेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई और बहुत राहत हुई, उसका काम बन गया और उसके मसाइल हल हो गए। अब एक और वाक्य सुन। मेडिकल कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, मेडिकल कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। इसी कोरोना में 2020 में वो भी फौत हुए और उनका जवान बेटा भी फौत हो गया। जवान बेटे ने एक दफा मेरे साथ हज भी किया था। कुदरत का निशान। एक दफा 1986 में, 86 उनके साथ मेरा सफर, उनके साथ मेरा सफर 86। तो जो 86 में मेरा सफर उनके साथ हुआ, उस सफर में वो अपना एक विर्द बैठ के पढ़ते थे। उनके पास था पंचसूरा, पंचसूरा नहीं होता, उस पंचसूरे में दुआएं और बहुत सारी थी, लेकिन वो बैठ के हिजबुल बहर पढ़ते थे। मुझसे फरमाने लगे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह बहावलपुर वाले, उनके वालिद से मुफ्ती मोहम्मद फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती मोहम्मद फारूक अंसारी जो हजरत कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के खानदान में से, कहने लगे मैं मुझे उन्होंने इजाजत दी थी और मैं उनकी इजाजत से पढ़ता हूं और इसके जो बरकात और फायदे वो उन्होंने मुझे बताए डॉक्टर साहब ने, अल्लाह अकबर, मैंने उन्हें 1986 में इसको अपने मामूलात में देखा, कि उनके मामूलात में था। फरमाते थे कभी 7 बार कभी 9 बार। और कहा अब मेरी जुबान में इतनी अजबर है कि 1 मिनट से भी कम लगता है मैं पढ़ लेता हूं, 1 मिनट से। और कहा कभी 20-30 बार भी पढ़ लेता हूं। और कहा कभी मैं 7 से कम नहीं पड़ता, 7 बार से कम नहीं पड़ता। पढ़ता खुद अपना वाक्या सुनाया, कहा मेरा सीनियरिटी का मसला था, यानी मुझे तरक्की करनी थी। जो मेरा मद्दे मुकाबिल था उसका हक भी नहीं बनता था, पर उसकी सिफारिश बहुत ताकतवर थी। जो बड़े थे सारे उसी के साथ थे और उसकी सिफारिशें बहुत ताकतवर थी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुझे बनना चाहिए था बायोकेमिस्ट्री का। बनने का इरादा उसी का था और सब कहते थे वही बनेगा, क्योंकि उसकी सिफारिश बहुत ताकतवर, एक नहीं हत्ता कि जिन्होंने ये ओहदा और शोभा देना था वो भी सारे उसी के साथ थे, उसी के साथ। तो कहने लगे कि मैं जहन में परेशान था। कहा मुझे अपने शेख जिन्होंने मुझे इजाजत दी थी, कहा मैं उनकी इजाजत से मैंने पढ़ना शुरू किया, यानी पढ़ता था, अब मैंने इस मकसद के लिए पढ़ना शुरू किया। कहा मैं पढ़ना शुरू किया और मैंने इसको ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। ज्यादा पढ़ते पढ़ते कहा एक दफा बाहर बहुत रात देर में मेरा दरवाजा किसी ने खटखटाया और बाहर आवाज आ रही थी कि एक बंदा नहीं कुछ चंद अफराद हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। मैं परेशान हुआ कि इतनी देर रात में किसने दरवाजा खटखटाया, तो बाहर से मेरी शनासा आवाजें आईं जो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे और शोभों के, वो आवाजें आई। तो कहा कि मैंने दरवाजा खोला तो बड़ी इत्तेफाक से मिले और कहा मुबारक हो आपकी ये लेटर आया है और बाई डॉक नहीं आया, एक खास खसूसी गाड़ी में लाया गया और कहा ये लेटर है, सुबह आपने अपनी कुर्सी पे नहीं बैठना, आपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट उस शोबे के बहसियत सरबरा बैठना है और हमें हुक्म है जाके ये खत ये लेटर उसे पहुंचाओ, हम आपके पास पहुंचाने आए हैं। कहा मैं वो खत देखूं, तो मैंने उनसे पूछा कि वो दोस्त, कहा उसकी सारी सिफारिशें नाकाम हो गई, वहां एक बंदा बैठा था वो अड़ गया। उसने कहा हक किसका है, इसका नहीं है। उसने कहा सिफारिशें हैं, उसने कहा मैं अपनी नौकरी दो पे लगाता हूं, हैं तो हैं, हक वाले को हक दिला के रहूंगा। कहा उसकी नौकरी उसने अपनी दो पे लगा दी, देखें क्या होता है, आपका उसने लेटर निकाल दिया, आप सुबह जाएं। कहा कि मैंने उनसे कहा कि बैठे खाना पीना, कहा नहीं हम आपको देने आए हैं। कहा मेरे आंसू निकल गए और कुछ आंसू उस कागज पे गिरे, तो मैं खत सुबह मैं लाया और सुबह गया तो मेरी कुर्सी इंतजार कर रही थी। कहा मैं जब कुर्सी पे बैठा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखों के सामने हिजबुल बहार के पहले जो अस्माए हुस्न है वह लिखे हुए हैं और चमक रहे हैं और हिजबुल बहार का सारा लफ्ज हर्फ बोल बोल के कह रहा है हमसे दोस्ती और जवाल, हमसे दोस्ती और जवाल ना, जो हमसे दोस्ती करता है उरूज उसी के साथ होता है, जो हमसे दोस्ती करता है उरूज उसी के साथ होता है। ये मुझे डॉक्टर साहब ने खुद अपना वाक्या सुनाया। एक और भी सुन ले, जिंदगी गुजरी ही सारी इसी काम में। सारी जिंदगी गुजरी 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 और गुजर गई। चलो मेरी इन बातों से नफा तो किसी को होगा, नहीं होगा? होगा ना इंशाअल्लाह। इंसानियत को, उम्मत को नफा होगा अगर मेरा जज्बा सच्चा हुआ। अल्लाह मेरे जज्बे सच्चे कर दे इंशाअल्लाह। मेरे एक उस्ताद थे अब्दुल जलील साहब, प्रोफेसर अब्दुल जलील साहब उनका नाम था। वॉलीबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी थे और अपने दौर के बहुत नामवर आदमी थे, दराज कद थे, हाफिज भी थे और हर साल बुढ़ापे में मुसल्ला भी सुनाते थे। बुढ़ापे में, इन्हीं बुढ़ापे से मुराद यूं कहूं कि जिस साल में वो रिटायर्ड हुए, जाहिर 60 साल, तो उन्होंने मुसल्ला सुनाया। मैंने उनका कुरान भी सुना था, बहुत अच्छा पढ़ते थे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, उस्ताद और मुर्शिद की खिदमत किए बगैर काम नहीं बनेगा। तो मैं उनके घर में जाके घड़े भरता था, झाड़ू देता था, सफाइयां करता था, उनकी खिदमत की कोशिश करता था, जाता था कॉलेज टाइम के बाद, कॉलेज के वक्त के बाद, दुआएं देते थे, खुश होते थे। एक दफा मैं गया, उनके पहले पीरियड होते थे, सीनियर थे, वो पढ़ा के फिर चले जाते थे, उनके पीरियड पहले पहले होते थे हर क्लास के, पढ़ा के चले जाते। मैं गया, परेशान बैठे। मैं कह सर आप परेशान हैं, खैरियत तो है? कहने लगा कि बेटे, बड़े बेटे का रिश्ता किया था और फलां करीबी अजीज के घर, तो उन्होंने रिश्ते का इनकार कर दिया और मैं अपनों से दूर नहीं होना चाहता, तो मैं चाहता हूं कि वो मेरे करीब रहें। रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने, उन्हें कोई ज्यादा दौलतमंद रिश्ता मिल गया, मैं दौलतमंद नहीं हूं, तो रिश्ता तोड़ दिया। मुझे कहने लगे तू तवीज धागे फूका फाकी करता है, कोई बता तो, ऐसे लफ्ज का, तवीज धागे फूका फाकी करता है, तू बता तेरा शौक है। मैंने कहा सर आप ना हिजबुल बाहर पढ़े, आती है आपको? कहा आती नहीं, मेरे वालिद पढ़ते थे, मेरे चाचा पढ़ते थे, फला फला पढ़ते थे, मेरे घर है, देख के पढ़ लूंगा। कितनी पढ़नी है? मैंने कहा जितनी में आपका काम हो जाए, जितनी में आपका काम हो जाए। अरे ठीक। कहने लगा रिश्ता हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे यकीन था। कैसे? खुदा के आपसे मिन्नत करेंगे, आपसे कहेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे। हाँ कहा, बस मैं यही चाहता हूं अपनों से ना छूटे, अपनों से ना टूटूं और ये सिला रहमी का सिलसिला जारी रहे, नाता ना टूटे। कहने लगे कि मैंने उन्हें अर्ज कर दिया, खैर में जो खिदमत टूटी फूटी थी करके चलाया। दूसरे दिन गया खिदमत करने के लिए, तो फरमान लेके मैं पढ़ रहा हूं और मुझे याद भी हो गई है मैं हाफिज हूं, और घर में इसके जिंदगी भर तस्करे सुने थे बड़ों से, और मुझे भी यकीन है कि इसके जरिए से काम होगा, मुझे भी यकीन। बस ये अच्छा चंद दिन हुए, तस्करा भूल गए, बात ही भूल गए, खिदमत की गया। बाज़ोकत कोई दिन मेरी खिदमत का चूक भी जाता था, मुझे जल्दी वापस आना होता था, वालिदैन की खिदमत का कोई सिलसिला होता था। तो खैर एक दिन मुझे कॉलेज में ही याद है मुझे, कुर्सियां बाहर पड़ी थी, धूप में सर्दियां थी, तो मुझसे दूर से आवाज दी, तारिक तुम आएंगे? और खड़े हो गए और मेरा माथा चूमा, और ऐसे महसूस हो रहा था कि उनकी आंखों में नमनाकी आंसू हैं, गिरे नहीं। कहने लगे बेटा मेरा काम हो गया। कहने लगे वो ऐसे बेताब होके आए, नदामत और शर्मिंदगी भी थी, और कहने लगे बस हमारे फलां बंदे ने हमें आपके बारे में बहका दिया था, और बस हमारे अंदर नदामत है, और हम जो है बस आपसे ही रिश्ता जोड़ेंगे, आपसे ही नाता जोड़ेंगे, और आपके साथ ताल्लुक कायम करेंगे। और फिर कुछ अरसे के बाद पता चला कि शादी हो गई। हिजबुल बहार। एक और वाकया भी सुन लो, वो भी मेरा बीता वाकया, उसकी भी मैंने चश्मे दी, उसको मैंने देखा। वो एक खातून आती थी बेवा, बड़े बड़ी उम्र के बच्चे थे, बेचारी बीमारियों दुखों के, शुगर उसको, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द, मैंने बीमारियों का मुरक्कब और मजमुआ थी। औलाद की शादियां नहीं होती थी, दो की हुई थी, एक की औलाद नहीं थी, एक घर बैठी थी, बेटे बड़े हो गए थे, तो वो मेरे पास दवाई लेने खातून आती थी, तो मैं जहां रुपया होता था वहां चवन्नी ले लेता था, जहां चवन्नी होती थी वहां आना ले लेता था, और पैसे जानबूझ के लेता था, बहुत थोड़े मुफ्त की दवाई फिर फेंकी जाती है। मुझसे एक दफा कहने लगे बेटियों के मसाइल हैं, औलाद के मसाइल हैं, आज मैं बीमारियों में हूं, मर जाऊं इनको कौन पूछेगा, रुल जाएंगी, रोती थी। एक दफा आई, अच्छा मैंने कहा मैं दुआ करूंगा, दूसरी दफा, एक दफा मेरे पास आई, पता नहीं अल्लाह की तरफ से दिल में अल्लाह ने डाला, मैंने कहा एक दुआ है जरा बड़ी सी। कह लगे मैं कुरान पढ़ी हुई हूं, मैं रोज मंजिल पढ़ती हूं, मंजिल से मुराद कुरान पढ़ती हूं, तो मैं पढ़ लूंगी। मैंने छपी हुई थी फोटो कॉपी, मैंने करा के उसको दे दिया। मैंने कहा ये दुआ है, आप इस दुआ को पढ़ें, बेटियों को भी कहें, घर वालों को भी कहें, और सारे इस दुआ को पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपके काम हो जाएंगे। से यकीन था, मिलता यकीन वाले को है। किसको मिलता है? बोलो, यकीन वाले को मिलता। और बेयकीन करीब रह के दूर, और यकीन वाला दूर रह के करीब। हजरत ख्वाजा उवैस करनी दूर थे लेकिन करीब थे, अबू जहल करीब था लेकिन दूर था, सिर्फ यकीन की दुनिया नहीं थी, वो बेयकीन शक और वसाविस की दुनिया में, और ख्वाजा उवैस करनी यकीन और हक और यकीन की दुनिया में ऐसे आगे निकले, सारी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। तो यकीन था, तो ये खैर यकीन की दुनिया के बंदे थे, और यकीन के साथ, यकीन के साथ उस खातून ने पढ़ना शुरू कर दिया। एक दो दफा मेरे पास आई दवाई के लिए या वैसे, तो कहा मैं पढ़ रही हूं, मेरा काम हो जाएगा, और मेरी औलाद में मेरी बस एक बेटी मेरा साथ दिया, बाकी तो कोई नहीं पढ़ता, खपती थी बैठ के बेचारी, रोती थी कि कोई मेरा साथ नहीं देता, फिर बच्चों को लाती थी कि आप ही ने समझा दें, पढ़ती रही, पढ़ती रही। और एक दफा आके कहने लगी कि मुझे आधी याद हो गई है, मैं पढ़ रही हूं, अब हाफसा कमजोर है, बुढ़ापा है, तो मैं बस पढ़ रही हूं और इंशाल्लाह पढ़ूंगी। और कहा कि अब मैं दिन रात पढ़ती, सबक पढ़ती। ये कुछ अरसा सिलसिला रहा। एक दफा उसका बेटा आया, छोटा सा था, मैंने उस दिन देखा उसके बाल सफेद हो गए। मैंने कहा तू फलां का बेटा है, तेरी अम्मा का नाम ये था, तेरी फलां बहन का, तेरे फलां भाई का नाम ये था। उसे कहने लगे आपने याद रखा, मैं छोटा सा था आपसे दवाई ले जाता था। एक वक्त बेटा आया, कहने लगे अम्मा मर गए। ओ अम्मा बस दो दिन तीन दिन बुखार बीमार हुए, अम्मा फौत हो गए। लेकिन जानिए उसकी मां का मौत का सुनते ही ना बेसाख्ता मेरे अंदर एक आवाज आई, मर तो गई है पर फैसले करवा गई। एक अंदर ऐसे ना कोई गैबी जैसे आवाज आती है दिल में ऐसे कि मर तो गई है पर अम्मा फैसले करवा गई। बेवा थी, गुर्बत थी, शोहर भी कोई मजदूर था, जवानी में मर गया, जवानी के बुढ़ापे में जवान औलाद हो गई, अम्मा मर गए कह के मुझे चला गया। मैंने कहा अम्मा को जो मैंने वो वजीफा दिया, कह रहे अम्मा बहुत पढ़ती थी, बस वो बुखार के दो तीन दिन अम्मा नहीं पढ़ सकी, अम्मा बहुत पढ़ती थी। मैंने कहा अल्लाह वाले या तेरी अम्मा फैसले करवा गई फैसले, क्योंकि मैंने उस अम्मा का जो दर्द और यकीन देखा था ना, क्या देखा था, दर्द और यकीन देखा था। मैंने मेरा मन कहता है, मेरा विजदान और सच्चा जज्बा दिल कहता है अम्मा फैसले करवा के, और ऐसे ही हुआ। उसका घर का आना जाना खत्म हो गया। अम्मा थी दवाई लेने आती थी, कभी दम कराने आती थी, अम्मा गई आना जाना खत्म हो गया। कोई दो ढाई साल के बाद वो आया, उसकी दो बहनें आईं, उनके खानदान आए और मिठाई का डब्बा था उनके हाथ में। कहने लगे आपको मिठाई देने आए हैं, आपकी दुआओं से हमारे काम बन गए हैं। हुआ ये, अम्मा के मरने के बाद सारे रिश्तेदार घर आके बैठ गए, वो जो पूछते ही नहीं थे, और जिन्होंने हमारे बाप का कुछ हिस्सा था घर का कुछ थोड़ा सा वो भी खा गए थे, हमें आज तक नहीं पूछा। पता नहीं उनके दिल को क्या हो गया, दिल किसके कब्जे में, और हिजबुल बार अल्लाह का नाम है। पता नहीं उनके दिल को क्या हो गया, सारे आके बैठ गए अम्मा की तदफीन के बाद, और एक दूसरे से कहने लगे बताओ इन बच्चों का कौन वारिस है। कहा एक कहने लगा ये मेरी बहू है, एक कहने लगा ये मेरा दामाद है, एक कहने लगा ये मेरी बेटी है, एक कहने लगा कि इनको घर का हिस्सा मैंने यूं दिया, एक कहने लगा वो जमीन का हिस्सा यूं दिया, एक कहने लगा यूं। कहा उनमें से हमारा जो खानदान का बड़ा था वो कहने लगा देख लो बाद में मुकर जाओगे, अगर नहीं मुकरेंगे हम करेंगे अभी। तो उसने कहा अगर करोगे तो अभी करो। तो उसने कहा अभी तो दफन करके आए हैं। तो उसने कहा ठीक है, शोक तीन दिन का होता है, मर्द का शोक तीन दिन का, औरत की इद्दत चार माह दस दिन की। शोक तो तीन दिन का होता है, इद्दत बैठने वाली तो खुद चली गई, जिसने इद्दत बैठना था वो तो खुद चली गई। तो शोक तीन दिन का होता है, तो तीन दिन के बाद कर दो। उन्हें कहा हो गए। कहा तीन दिन के बाद सब बच्चों बच्चों की शादी हो। रोती हुई मां के घर से गई और घर में सबकी शादी हो गई। कहा एक हमारा छोटा भाई था वो रह गया। सबकी शादी हो गई, खुशहाल हो गए, रिस्क वसी हो गया,
कहने लगे आपके पास दवाई लेने आते ही इसलिए थे, आप कभी लेते थे कभी थोड़े से ले लेते थे कभी उधार रखवा लेते थे, हमारे पास कभी दवाई के पैसे नहीं होते थे और कभी जो है रोटी के पैसे। अब घर खुशहाल हो गया है और घर में तवंगरी आ गई है और 2-2.5 साल के बाद नक्शे बदल गए हैं और जिंदगी बदल गई है। अम्मा फैसले करवा के गई थी। जिस वक्त आके कहा ना कि अम्मा मर गई है, उसी वक्त मेरे अंदर से निकला था कि अम्मा फैसले करवा गई, अम्मा फैसले करवा गई, क्योंकि उसने तड़प के पढ़ा था, तड़प के बिलक के, और उसने विजदान से पढ़ा था, दर्द से पढ़ा था, दर्द की कैफियतों से पढ़ा था। दर्द ऊपर पहुंचता है, यकीन दरवाजे खटखटाता है, और सच्चा जज्बा अल्लाह के खजानों से दिलवाता है, दिलवाता है। सच्चा जज्बा अल्लाह के खजानों से दिलवाता है और सच्चा जज्बा अल्लाह के खजानों से फैसले करवाता है। रहमत, राहत, बरकत और आफियत, आफियत, आफियत के फैसले करवाता है, फैसले करवाता है। अम्मा ने फैसले करवा ली। मुझे याद है एक बेटी का नाम था सईदा, सईदा, वो फिर सईदा नहीं कहते, सईदा इसका नाम है, सईदा, आइन खा जाती थी। एक बेटे का नाम सईद था, सईद इसका नाम है, वो आइन उसको आता ही नहीं था, पर अम्मा ने जिस जज्बे से पढ़ा, क्यों, बेवकी की जिंदगी गुजारी और फक्र की और मुफलिसी की और गुर्बत की और धक्कों की और लोगों के तानों की और रिश्तेदारों करीबों ने हक छीन ली। अम्मा ने वो जिंदगी जो गुजारी, अम्मा फैसले करवा, कब्र में जा और नस्लों की राहत का निजाम बना और अल्लाह के हुजूर चली गई। एक वाक्या और भी सुन, थक तो नहीं गए? अजब दुनिया है, छुपे हुए खजाने हैं और छुपे हुए खजानों के अंदर खजाने। असल में अम्मों में ये बात होती ही नहीं, ना इसके तस्करे, ना मीडिया में इसके तस्करे, ना किताबों में इसके तस्करे, ना पहले दिन इसके तस्करे, ना मिंबर पे इसके तस्करे, ना महफिल में इसके तस्करे। तस्करे ही नहीं होते, तस्करे ही नहीं होते। वो तो जिस चीज के तस्करे होते हैं वही वजूद में आती है, जिस चीज के तस्करे होते हैं वो चीज वजूद में आती है, जिसके तस्करे नहीं होते, तस्करे ही नहीं होते। तो तस्करों से चीज वजूद में आती है। मेरे साथ ना एक मेरा क्लास फेलो था, राहत अली उसका नाम था, शेख राहत अली उसका नाम था, पड़ोस में रहता था, गली के किनारे पे उनका घर होता था, यानी उनके पास दौलत और माल का अंदाजा ये देखे, माल और दौलत का अंदाजा ये देखे कि एक दफा उनके तहखानों से चैन कुप्पी क्रेनों के साथ ये सुनार की तिजोरियां और ये पेटियां नहीं होती बहुत भारी, ये निकल रही थी। तो एक पेटी
सुनार की तुजारी का दरवाजा खोला, एक कंगन निकला उसमें से और यूं घूमता घूमता वहां गया। मैं वो मंजर देख रहा था तो मैंने वो कंगन उठा के दिया, तो उन्होंने बड़ी बेरगबती के साथ लिया, यानी सोना इतना था और इतना था और इतना था और बहुत था। अच्छा, हम कुछ सातवीं आठवीं में उसके बाद ऐसे जुदा हुए कई साल तक। कभी कभार ऐसे सलाम हो जाता था दूर परे से, रब्ता ही खत्म हो गया, ताल्लुक ही खत्म हो गया। एक दफा मुझे मिला और कहने लगा, एक बात करनी है आपसे। क्या हुआ? कहा, हालात ने और हालात की सख्तियों ने बहुत घेर लिया, हालात ने और हालात की तंगियों ने बहुत घेर लिया, बहुत ज्यादा, और हालात तो बहुत तंग हो गए हैं, परेशानी है, क्या करो। पता नहीं मेरे दिल में अचानक आई एक वजीफा, दूसरा सोचा, एकदम आया, मैंने कहा एक दुआ है हिजबुल बहार, दो तीन सफों की है, मैं तो नहीं पढ़ सकूंगा, मैं वो तो पढ़े बगैर गुजारा नहीं होगा, काम तेरा हो जाए। कहने लगा, मेरे फला एक बूढ़ी खातून है बड़ी उम्र की, अगर मैं वो दे दूं वो मेरी तरफ से पढ़ ले तो, मैं क्या फिर भी काम हो जाए। उसे मैंने कॉपी करा के दे दी, मैंने कहा उनसे समझाना कि इसको बहुत पढ़ना और इसको बहुत पढ़ना। खैर वो चला गया, जब चला गया कुछ अर्सा ना मिला, वैसे भी कभी कभार कोई मिलना मिलाना होता था। एक दफा मिला तो मैंने खुद पूछा, मैं क्या हाल है? हालात कहा नहीं अभी वैसे हैं। मैंने कहा उस बीबी से जाके कहे तेरे पढ़ने में कमी है, तेरे मांगने में कमी है, तेरे जज्बे में कमी है, करीम की अता और देने में कमी नहीं, उसे जाके कहे। उसने जाके कहा, फिर मुझे मिला एक दफा तो मैंने पूछा तो उसने कोई जवाब ना दिया, यानी दिया कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक साहब ने जो उसके करीब रहता था घर के, मैंने उससे पूछा, ऐसे ऐसे फलां बंदा मेरे पास आया था, क्या ख्याल है? उसने कहा, जी उसके घर के बाहर जो छिलके होते हैं, उसका जो लिबास है, उसके पास जो सवारी है, उसके तो नक्शे बदलते जा रहे हैं। लेकिन मुझे तो कहता है कुछ नहीं है। कहा, रोटी शक्कर नाल दुनिया मक्कर नाल, रोटी शक्कर नाल दुनिया मक्कर नाल, ऐसे मक्कर करता है। वो कहता है कि शायद आप उससे वो दुआ वापस ना ले लें, उसके तो नक्शे बदल गए हैं। अच्छा आपने दी है? मैंने कहा वो नहीं पढ़ रहा, कहता है मैं किसी और से कहूंगा वो पढ़ेगा। कह मैं जानता हूं, और वो वाकई बीबी पढ़ने पढ़ाने वाली है, बहुत अल्लाह वाली है, और वाकई उसके नक्शे बदल गए, हालांकि उसने खुद नहीं पढ़ा, उसकी तरफ से किसी ने पढ़ा, और उसकी तरफ से इतना पढ़ा कि इतना पढ़ा, उसके नक्शे बदल गए, उसके रिस्क में वसत हो गई, उसकी जरूरतें गैप से पूरी हो गई, उसके मसाइल हल हो गए, कहते कुछ कर्जा भी था वो भी खत्म, और खुशहाली के दरवाजे खुल गए और वसत के दरवाजे खुल गए। दरअसल हिजबुल बहार अकल नहीं मांगती, इश्क मांगती है, बस ये बात याद रखे, अकल नहीं मांगती, ये मांगती है इश्क। दो चीजें इश्क मांगती हैं, एक मुर्शिद से ताल्लुक इश्क मांगता है, उसमें अकलें फिर चली जाती हैं, जो अकलों से चलते हैं वो मुर्शिद की दोस्ती को नहीं पा सकते। جو عقلوں سے پرکھتے ہیں، جو عقلوں سے سوچتے ہیں، جو عقلوں سے تولتے ہیں، پھر وہ دنیا کی سنی سنائی باتوں کو دل پہ لے کے یقین کی دنیا کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ دنیا کی سنی سنائی باتوں کو یقین پہ لے کے اور عقل سے لے کے وہ بس سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ اور جو عشق ہوتا ہے وہ سنی سنائی باتیں جتنی بھی ہو جائیں اس کو اثر نہیں کرتی، بلکہ اس کا عشق بڑھتا چلا جاتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح فقیری درویشی اور کسی فقیر سے بیت عشق مانگے، اسی طرح حزب البحر بھی عشق مانگے، یقین مانگے، یقین مانگے، جذبہ مانگے، وجدان مانگے، بے خودی، کیف، مستی، یہ مانگے، پھر ملتا ہے، پھر پاتا ہے، اور پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ کون کہتا ہے دعاؤں سے تقدیریں نہیں بدلتی؟ آؤ میں بتاؤں، حزب البحر سے تقدیریں بدلتی ہیں، حزب البحر سے فیصلے بدلتے ہیں، حزب البحر سے دنیا بدلتی ہے، حزب البحر سے کائنات کا نظام بدلتا ہے۔ کون کہتا ہے تقدیریں دعاؤں سے نہیں بدلتی؟ کیوں نہیں بدلتی؟ ہم نے دعائیں مانگنا نہیں آیا، دعاؤں سے لینا نہیں آیا، دعاؤں کے خزانوں سے ہمیں مانگنا ہی نہیں آیا۔ پھر ہمارا بھی قصور نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، تذکرے ہی نہیں۔ جب تذکرے ہی نہ ہوں پھر بندہ کیا کرے؟ بچے کو جو آج میں فون کیا تو اس میں دل دل پاکستان، جان جان پاکستان لگا تھا، اس بندے نے کال نہ اٹھائی تو کہنے لگا کہ آپ کی یہ کال نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر کال کریں۔ اس نے تھوڑی دیر نہیں کہا، ٹون میں ایک اور لفظ کہا، چند سیکنڈ کے بعد پھر کال کریں۔ مجھے جھٹکا لگا، پہلے کھوتی تھی ٹون میں کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد، انہوں نے کہا چند سیکنڈ کے بعد پھر کال کریں، اس کا مطلب ہے کال کر پھر کال ملے گی، کرتا رہے، کال کرنی نہیں چھوڑنی۔ کال کی تو کہا عارضی طور پہ یہ نمبر بند ہے، تیرا نمبر بند ہے، اللہ کا عارضی بھی بند نہیں، پکا بھی بند ہے، اللہ کا عارضی بھی بند نہیں، پکا۔ پھر ایک اور بات میں نے آج سنی، ایک جگہ فون کر رہا تھا، اس ٹون کو کاپی کرنے کے لیے اتنے پیسے، ٹیکس اتنا، میں نے کہا نہیں، اللہ کہتے فری کہانی چلا، مجھ سے باتیں کر، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی پیسے نہیں، کچھ نہیں، بلکہ دوں گا، خود دوں گا۔ تو اللہ کی ہر کال ریسیو کا ایک، اللہ کی کوئی مس کال نہیں، اللہ کا نمبر بلاک نہیں، بند نہیں، نہیں ہے بند۔ اچھا، اللہ کا نیٹ ورک بہترین، ہر جگہ لاجواب، پورے سگنل آتے ہیں، نیٹ ورک پورا، بات صاف، ہیلو آواز کٹ رہی ہے ذرا پھر بولیے، بالکل نہیں، آواز ٹوٹ گئی، سمجھ نہیں آ رہی، ذرا کان کے قریب کرنا، ہرگز نہیں۔ اس کی باتیں 100% پہنچے بہترین، سننا لاجواب، پھر کال میں جتنا لمبا پیکج لگاتا جا وہ سنتا جائے، نہ اکتا ہے نہ گھبرائے، اور سناؤ، اللہ کہے اور سنا، سنا ٹھیک ہے، اور سناؤ، اللہ کہتے ہیں اور سنا، ٹھیک ہے سنا، میں سنوں، ادعونی استجب لکم، ماں دیتا ہوں، اور سنا۔ اچھا، اللہ کی کال پھر کٹے نہ، پیکج ٹوٹے نہ، پیسے بھریں تو پیکج، ریسٹ ٹو رینٹ، ریسٹ کرنا ہے تو رینٹ دینا پڑے گا، ریسٹ ٹو رینٹ، پیسے ہیں ریسٹ، ورنہ چیک آؤٹ، نکل سارے۔ اس کی ساری، اس کی سارا نظام عجب ہے، آ بیٹھ پڑھ کر، پر اس میں عشق بھی ہو، اس میں جذبہ بھی ہو، اس میں وجدان بھی ہو، और उसमें यकीन भी। पूछा, आप इतने बाकमाल हैं, आपने कितनी किताबें पढ़ी होंगी? कहा एक किताब। कहा कौन सी? कहा किताबें मुर्शिद। बस मैंने एक किताब पढ़ी, फिर दुनिया की हवाएं चली, आंधियां चली, मुझे किताबें मुर्शिद से न हटा सके। हवाएं चली, आंधियां चली, मुझे किताबें मुर्शिद से न हटा सकी। मैं किताबें मुर्शिद को पढ़ता रहा और मैं मुर्शिद की किताब में ऐसा कि बेयकीनी, शक, वसाविस मेरे करीब ही ना आए। किताबें मुर्शिद तो यकीन की दुनिया से हिजबुल बाहर की दुनिया में आ जाए, दुनिया आखरत के खजाने सवर जाएंगे। वाकयात तो बहुत सारे हैं, पूरी दुनिया को इजाजत है, चिट आई है कि पूरी दुनिया ने आपकी बातें सुनी है, हिजबुल बाहर पढ़ने की इतनी इजाजत है। बेवा की तरह फैसले कर आ जाए। अम्मा मर गई, ऐसे उसने मुझे कहा ना, अंदर से आवाज आई, अम्मा फैसले करा दे, अम्मा फैसले करा। और जो फैसले अम्मा ने कराए, और वो कराए के नस्लें उठ यार फरीद थी शादवल, मुझा को ना कर यादवल, ए झोंका थिसन अबादवल, दरिया ना वांदे सदा हिक मणि, दरिया भी एक वक्त आता है अपने रुख बदल देता है, दरियाओं के रुख भी बदल जाते हैं, ये तो फिर भी जिंदगी है, साए भी ढलते रहते हैं, ये ढलते बढ़ते साए, ये दुनिया है दो चार दिनों की, अंत कोई ना पाए। दौलत दुनिया रूप जवानी, चार चीजें, दौलत दुनिया रूप जवानी, ढलते पड़ते साए, दुनिया है दो चार दिनों की, ये दुनिया है दो चार दिनों की, अंत कोई ना पाए। यकीन के साथ कोई कहानी चला दें, यकीन वाली, क्या ख्याल है? हिजबुल बाहर तो यकीन माने और इश्क मांगे, और फकीर की दुनिया इश्क मांगे यकीन मांगे। सारी उम्र मुर्शिद को तोलता रहा, कभी थर्मामीटर से, कभी आजमा के, कभी किस तरह, कभी किस तरह। किसी ने तारीफ कर दी, कहा सुभान अल्लाह, किसी ने शक वसाविस बदगुमानियां डाल दी, कहा तौबा इस्तग़फ़िरुल्लाह। सारा दिन सुभान अल्लाह और तौबा इस्तग़फ़ार में ही सारी जिंदगी रहा। इश्क चाहता है इश्क, फिर कोई चीज होती है, क्या ख्याल? इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग अमलियात, वज़ाइफ, तावीज़ात की दुनिया में चल रहे हैं, वो अपने मुशाहदात, तजर्बात, तावीज़ात, कोई विर्द, अपना कोई अमल, कोई नक्श, कोई तावीज तफसील से फायदों के साथ लिखें और मुसलसल खत पहुंचाएं। मैं तो टीम बना रहा हूं और बनाई है जो इंसानियत की खिदमत करे। मैं चाहता हूं आगे बढ़ें और इसको पहुंचाएं, लिख लिख के, डाक के जरिए, मैसेजों से यह काम नहीं चलता, वॉइस मैसेज से नहीं चलता, ये सिर्फ लिखने से होता है और साफ साफ लिखने से होता है। चलें आगे बढ़ें, लोगों को नफा पहुंचाएं, आपकी जात से लोगों को नफा पहुंचे। इसलिए कहता हूं कि मेरे चंदे भी जारी रखो, तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वसत भी मिलती रहे। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 मैंने बताई है, 11 दफा पढ़ लिया करें सुबह शाम या हर नमाज के बाद। तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वसत, या हफीजो या सलाम, हामीम लायून सारू, ये सारी चीजें। एक चीज और कर लिया करें, हर नमाज के बाद सिर्फ एक दफा सूरत अल्हा को मुतकासर पढ़ने का आज फैसला करें। और जो वजीफे करते हैं, सिर्फ हर नमाज के बाद सिर्फ एक दफा सूरत, कौन सी? सिर्फ एक दफा, मेरा और मेरी नस्लों की नियत करके पढ़ें, फिर देखें लौट के ताकत आपकी तरफ आती कैसे। मेरा और मेरी नस्लों की नियत करके सिर्फ एक बार क्या पढ़ेंगे? सूरत अल्हाकुम तकासुर, सूरत तकासुर। रबीउल अव्वल में बड़े अनोखे पैकेज, लंगर भी अनोखे, हैरत अंगेज पैकेज हैं, مسائل مشکلات پریشانیوں کے لیے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، حیران ہو جائیں گے۔ پانی والا تعویذ آپ خود بھی ماشاءاللہ ڈال رہے ہوں گے، تسبیح خانے سے لے لیں اس کو پانی میں ڈالیں، ادب سے قدر سے بہتے پانی میں، تو لینے کے لیے ٹیلینار کے نمبر پہ اپنا نام لکھوا دیں۔ اسم اعظم کا جو روحانی دم ہے، کشف المحجوب ہے، وہ 12 ربیع الاول کی صبح فجر کے بعد ہوگا۔ اسم اعظم کا دم 12 ربیع الاول صبح فجر کے بعد، ڈبہ پہلے لے لیا کرے دم کا، اسے بہت باکمال چیزیں ہوتی ہیں۔ اور مشکلات اور مصائب سے بچنے کے لیے سفر کے مہینے میں سورت قریش کو پڑھیں، نہ چھوڑیں سورت قریش۔ یہ سفر کا مہینہ سونا بنانے کا مہینہ ہے، نہ چھوڑیں۔ اور اس کا جو اختتامی دعا ہوگا ہوگی وہ 12 ربیع الاول کو ہوگی۔ اپنے ہاتھوں سے لنگر لائیں، ہدیہ ضروری ہے لیکن اپنے ہاتھوں سے بانٹیں اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، اور بہت زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ ابھی مجمع جب نکلتا ہے تو ہمارے وارڈن بہت توجہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، مسلم غیر مسلم سب یہاں رہتے ہیں۔ اور سویا و نصیب اگر جگانا ہے تسبیح خانے میں، ہر ہفتے 3 دن کا روحانی چلہ ہوتا ہے، جمعرات عصر سے اتوار ظہر تک، بہت نفع ہوتا ہے 3 دن۔ یہاں بوڑھے ہیں یا جوان، دنیا آخرت کی خیریں پانے کے لیے چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یا پوری زندگی یہاں تسبیح خانے میں عبادت اور خدمت کی نیت سے وقف کریں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، اللہ کی رحمت سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ پاک کا نظام۔ اور اگر کبھی شک ہو تو اپکری کی ویب سائٹ پر جادوئی لائبریری وزٹ کریں، انگریزوں کی بے شمار کتابیں ہم نے جمع کی ہیں، جن پہ جادو جنات نظر بد ہوا، پھر ان کا ساتھ کیا ہوا، ہم نے ان کی کتابیں جمع کی ہیں انگریزوں کی، کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا انہوں نے لکھا۔ ہمارے بعض لوگ ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جادو جنات انگریزوں کو نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے نظر بد۔ ہم نے ان کی بہت زیادہ کتابیں جمع کی ہیں، آپ کے پاس بھی لنک ہو تو ضرور بتائیں۔ جوتے اپنے استعمال کریں، ورنہ بعض اوقات جوتے پہننے سے الٹے اثر ہو جاتے ہیں۔ بچے آتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، خواتین بچے کھلونے بسکٹ ٹافیاں انہیں دیا کریں، یہی ہماری مستقبل کی نسلیں ہیں اور یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ پوری دنیا کے لوگ میرے والدین کے مزارات پر اعمال کا ہدیہ لے کر جاتے ہیں، الحمدللہ بے شمار اعمال کا ہدیہ پیش کر کے اعمال کی برکت سے اللہ کے خزانوں سے مرادیں پا رہے ہیں۔ اجازت ہے لیکن وہاں غیر شرعی کیفیات سے بچیں۔ اور حویلی میں جب سے 129 کا چلہ ہوا ہے، عید کے تیسرے اور چوتھے دن، عید الفطر کے، انشاءاللہ آئندہ سال بھی عید الفطر کے تیسرے اور چوتھے دن وہاں ہوگا، وہاں جو بھی جاتا ہے چند نصاب پڑھتا ہے، چند دن رہتا ہے، بہت فیصلے کروا کے آتا ہے حویلی میں، بہت فیصلے کروا کے آتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت تو آپ پہ، اللہ کا فضل ہو۔ درود شفا میرے ساتھ پڑھ لیں، بہت مبارک عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے، اور یہ درود شفا وہ ہے کہ جو روحانی جسمانی بیماریوں تکلیفوں الجھنوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے، درود شفا۔ اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم، اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم، اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء مبارک وسلم۔ یہ درود اپنی نفلی عبادات، صدقہ خیرات، پوری امت کے مرحومین کو ہدیہ کریں، اپنے پیاروں کو ہدیہ کریں، اپنے مرحومین پیاروں کو نہ بھولا کریں، ان کی قبروں پہ جایا کریں، اعمال کا ہدیہ دیا کریں، ان تک پہنچتا ہے، ان تک پہنچتا ہے، قبروں کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھیں، ان تک پہنچتا ہے۔
تو ان تک پہنچایا کریں. جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں, جو مزید بیعت کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ بیعت کے کلمات پڑھتے جائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بدعت سے, صغیرہ کبیرہ گناہوں سے, تیری ہر نافرمانی سے. عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ. یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. تین تسبیحات, نماز, تلاوت کا بہت اہتمام کریں. حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت نظر رکھیں. اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے, جمعرات کی حاضری یا اپنے مقام پہ نیٹ موبائل کے ذریعے مسلسل درس سنتے رہیں. میں بھی, ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں. اب ذکر خاص ہوگا پہلے, پھر اس میں ذات کا ذکر ہوگا, پھر مراقبہ ہوگا اور پھر دعا ہوگی. یہ ذکر خاص وہ چیز ہے صدیوں سے اولیاء صالحین کا آزمودہ, جسے ختم خاجگان کہتے ہیں, صالحین کا آزمودہ ہے. جب بھی کوئی مشکل, پریشانی, دکھ آیا, یہی ذکر خاص اور ختم خاجگان لے کر بیٹھے, پڑھا, دعا کی, اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اس کو تھوڑا پڑھیں پر یقین سے پڑھیں, ایک بار پڑھیں پر گمان, یقین اور دل کی گہرائیوں سے پڑھیں, اندر کے پورے درد سے پڑھیں, اندر کے پورے سچے جذبے سے پڑھیں. میرے ساتھ توجہ سے پڑھیں گے اور پورے دھیان سے پڑھیں گے, ذکر خاص پڑھنے والا محروم نہیں رہتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ اللهم صل على محمد. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم صل على محمد. يا الله يا عزيز يا وهاب يا كريم يا حي या कयूम حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا قاضي الحاجات يا دافي البليات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا شافي الأمراض يا منزل البركة يا رافع الدرجة يا مسبب الأسباب يا مجيب الدعوات يا من الخائفين يا خير الناصرين يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين أغثنا يا مفرح المحزن رب إني مغلوب فانتصر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد كما تحب وترضى آمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو اب بیٹھ کے بہت دل کی گہرائیوں سے باواز بلند اس میں ذات اللہ کا ذکر کریں گے پورے جذبوں کے ساتھ باواز بلند پورے درد کے ساتھ باواز بلند پورے وجدان کے ساتھ باواز بلند اندر کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ باواز بلند ذکر کریں گے اللہ کا جذبے اور وجدان کے ساتھ پھر مراقبہ اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آمین.
یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین اللهم واقعتن کواقعت الولید اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت بمن شئت وكيف شئت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اے سخی آقا دکھوں کے مارے غموں کے ہارے در در چھان چھان کے ہم سارے تیرے در پہ آئے ہیں اور بڑے در تلاش کیے سب دروں سے کچھ بھی نہ ملا بلائے مایوسی اور ذلت کے کچھ نہ ملا تیرے در پہ آئے ہیں دامن بھی سارا چیت چیت ہے اور دل بھی سیاہ ہے اور ہاتھوں کی لکیریں تک سیاہ ہو چکی ہیں اے اللہ اپنی ساری قسم پرسی کا اعتراف کرتے ہیں ایک طرف ہمارے جیب خالی ایک طرف دل خالی ہے خالی جسم کے ساتھ تیرے در پہ آئے ہیں اے سخی آقا بے شر حافی نے ایک چھوٹا سا عمل کیا تھا ایک کاغذ پہ پرزے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا اس نے ایک چھوٹے سے پرزے کی قدر کی تھی شراب کے نشے میں تھا ساری عمر شراب پیتے زندگی گزر گئی تھی تیری موجیں رحمت کی برسیں اسے بغداد کے ولیوں میں ولی بنا دیا اللہ میں اس کے مزار پہ بغداد میں گیا ہوں تو ہماری کسی نیکی کو ہی قبول کر لے اے سخی آقا کتنے بڑے مجمع نے حزب البحر پڑی کت درد سے پڑھی پوری دنیا کے مجمع نے تیری بندیوں نے یہاں کوئی ایسا رونے والا ابھی تیرے نام اسم ذات کو جپنے والا کسی ایک کے نام کو قبول کر کے ہم تو ہمیشہ حافی سے نیچے گئے گزرے ہیں ہم اس سے نیچلے درجے کے اس سے بھی نیچلے درجے کے ہیں تو نے اس کو بغداد کا ولی بنا دیا اور بڑی بڑی ہستیاں بغداد میں ان سے پڑھنے جاتی تھیں ذکر اور تیرا نام سیکھنے جاتی تھی اے میرا مولا میں بغداد کی ایک گلی میں گیا تو بشر حافی کا مزار تھا ایک بڑی اماں کے پاس ان کے مزار کی چابی تھی انہوں نے مزار کی چابی کھولی تو مجھے وہ سارا واقعہ یاد آ گیا میں نے بشر حافی کو کھڑے ہو کے وہ واقعہ سنایا اور کہا ہے درویش تجھے رب رنگ سکتا ہے آج وہی رب ہے جو جو بشر حافی کا رب ہے نا آج بھی وہی رب ہے آج بھی وہی رب ہے آج بھی وہی رب ہے اللہ میں نے وہاں بوڑھی اماں نے چابی کھولی اور مزار کا دروازہ کھولا اور میں نے بشر حافی کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میرا اللہ शराब के नशे में था, एक बिस्मिल्लाह की कदर में मौला तूने इसे विलायत का ताज पहना दिया। तस्बीह खाना दिन रात तेरे नाम की कदर की कोशिश, तेरे नाम के फैलाने की कोशिश, तेरे बंदू के दिलों में तेरा नाम बिठाने का फिक्र। किसी एक की बरकत से इस रोते से सकते मजमे की दुआएं कबूल कर ले, दुआएं कबूल कर ले, फरियादें कबूल कर ले, और आहें कबूल कर ले, और दर्द कबूल कर ले, इस रोने और आंसू को कबूल कर ले मौला। चलो किसी किसी एक के आंसू तो सच्चे होंगे, किसी एक के आंसू तो सच्चे होंगे, उस सच्चे आंसू की बरकत से हम झूठे आंसू के झूठे आंसू कबूल कर ले, कबूल कर ले। कपनी कभी इस दर से महरूम न फरमा, कभी इस दर से महरूम न फरमा, अपने दर्द को अपने दर को अता फरमा और सच्चे जज्बे अता फरमा, दादू जिन्नात का तोड़ अता फरमा और जिंदगियों में खुशियां खुशहालियां अता फरमा, राहत आफियत और बरकतें अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, हमारी झोलियां खाली भर दे, खाली हाथों के कशकोल भर दे। पूरी दुनिया में जहां आमीन कहने वाला सबकी आमीन कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। जो आसें लेके आए हैं कबूल कर ले, जो उम्मीदें लेके आए हैं रहमत की मोहरें लगा दे और कबूलियत की मोहरें लगा दे, अपनी रहमत से अपनी छांव में पाक कर दे, जज्बों को तन्हाइयों को दिल की कैफियतों को पाक कर दे। इस तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुसअत दे दे, आफियत दे दे और अहल लोगों को मुतवज्जे फरमा दे, मेरी और मेरी नस्लों को इसका गुलाम और खादिम बना दे। सदा ऐसे दर खुले रहे, मखलूक फैज पाती रहे और आफियतों के दरवाजे खुले रहे। किसी आजमाइश और इम्तहान से बचा, बस जिल्लत इल्लत और किल्लत से बचा, अपनी रहमत अता फरमा, हर आमीन कहने वाली की आमीन कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। आमीन 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 आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबी करीम वअला आलिहि वसहबिहि वअज़वाजिहि वबनातिहि वअहलि बैतिहि वइत्रतिहि وأهل بيته وإطرته وأهل بيته وإطرته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.